डॉक से कि जहाँ सर सब जहाज आते हैं और वहाँ से सब जहाज डॉक से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ प्रभुपाद का जन्म स्थान जो है कई साल जो है हमारे हाथ में नहीं था, तो 12 साल हम उस प्रयास कर रहे थे उस जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए। तो 125 इयर्स के उपलक्ष्य में वो भी अभी इस्कॉन में हमको वो प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है। हालांकि उस के लिए कलकत्ता गवर्नमेंट है उनको जो लॉ था उसको बदलना पड़ा ताकि वो इस्कॉन को ये प्रॉपर्टी मिल सके। और साथ साथ अभी ये जो 2022 साल आएगा, सो 21 फरवरी 1922 इस दिन पे श्रील प्रभुपाद उल्टडंगा जंक्शन के जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना आश्रम स्थापन किया था, तो वो जो इमारत है इमारत के टेरेस के ऊपर सबसे पहली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ श्रील प्रभुपाद की मुलाकात हुई थी। तो ये अगला साल है उस मुलाकात के 100 साल उसके लिए पूरे होंगे। और वो जो स्थान है उल्टडंगा जंक्शन का वो भी अभी इस्कॉन के ओनरशिप में आ गया है। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जो है उन्होंने कृष्ण भावना प्रचारित करने के लिए सारा दुनिया में प्रवास किया और सभी लोगों को हरि नाम हरि कीर्तन और हरि प्रसाद प्रदान किया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सब लोग जो है श्री प्रभुपाद कृष्ण जो है वो भी श्री प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कर रहे कि जो जहाँ स्थान है जहाँ प्रभुपाद रहे थे और जहाँ पर उनकी अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे मुलाकात हो गई, वो भी स्थान अभी हमारे इस्कॉन मंदिर के इसके अंदर है, ताकि आगे वाले लोग जो है जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, प्रणाम अर्पित कर सकते हैं और स्फूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की एक महान विशेषता ये थी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, कभी स्वयं को उन्होंने प्रसिद्धि नहीं प्रदान की। अगर आप अन्य आध्यात्मिक मूवमेंट्स देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, तो वो मूवमेंट उस व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध होती है, मगर श्रील प्रभुपाद ने क्या किया कि स्वयं को पीछे रखकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत ये अपने संस्था का नाम रखा था। मगर आज हम देखते कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य और उनके शिष्य के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि प्रभुपाद की महिमा जो है वो सारे जगत को समझे। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद की सारी जीवन रेखा जो है कुछ घंटों के अंदर आपके सामने विविध भक्त आकर प्रदर्शित करेंगे, तो आप सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक उसको सुनना और वो जो उसमें से जो शिक्षण होगा शिक्षा होगी उसको आप ग्रहण कर लीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तर खूप खूप धन्यवाद श्रीमान सनत कुमार प्रभूजी की अतिशय अल्पवेळतच प्रभूजींनी खरं तर एका वाक्यामध्येच आपल्याला खूप मोठा संदेश दिलेला आहे की प्रभुपादांची जो प्रचार कार्य आहे ते व्यक्ती केंद्रित नसून भक्ती केंद्रित आहे आणि अखिल विश्वाला त्यांनी ही भक्ती प्रदान केली। यानंतर मी विनंती करेन श्रीमान आदिकेशव प्रभूजी यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करायचं आहे। तो आइए सब हम मिलके प्रभुपाद जी का 125वा जो आविर्भाव दिन है वो बड़े उत्साह से मनाएंगे, तो मैं नम्र निवेदन करूंगा श्रीमान आदिकेशव प्रभु कि आइए और हमें प्रोत्साहित कीजिए प्रभुपाद के बारे में कथा करके। आदिकेशव प्रभु हमें विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद का जन्म और उनकी बचपन की जो लीलाएं हैं वो सुनाएंगे और उससे प्रोत्साहित करेंगे, तो मैं प्रभु जी को विनंती करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण.
ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशाधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा.
तो आज के इस अवसर पर हम जो ये उत्सव 125 प्रभुपाद के जन्मदिन, वैसे भगवद गीता में लिखा है कि जन्म कर्म चेम दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन. तो ये भगवान बताते हैं मेरे उनके बारे में. लेकिन जो संत पुरुष होते हैं वो भी भगवान की पूरी तरह से आश्रय ले होते, इसलिए उनका भी जो जन्म है, उनका भी जो कर्म है, उनका भी जो कुछ कार्य है. तो हम प्रभुपाद के बारे में जानते हैं कि उन्होंने इस इतिहास, इस संसार में ऐसे कभी पहले नहीं हुआ, ऐसे कुछ उन्होंने करके दिखाया. तो उनका जो जन्म है वैसे बहुत एक नज़र से लगेगा, अरे ये भी तो साधारण है, हर एक बच्चे ऐसे करते हैं. लेकिन सत्य यह है कि वो कोई साधारण नहीं थे, नित्य सिद्ध थे. लेकिन जब इस बच्चे के रूप में या मनुष्य के रूप में जब हो तो कहीं लगता है कि अरे ये भी तो कोई साधारण. फिर भी संक्षेप में हम जितना हो सके बताएंगे, फिर उसके बाद जो भी वक्ता है वो आगे के. तो ऐसा है कि प्रभुपाद का जन्म हुआ था, सबको मालूम है, हम फिर से दोहरा रहे कि 1806-09 में. तो ये विशेष कर ऐसे दिन हुआ था जो जन्माष्टमी के दूसरे दिन हुआ था. और वो अपने माँ के घर, यानी पिता के घर से दूर माँ के घर में, तो ये जो फनस का पेड़ होता है उसके नीचे उनका जन्म हुआ. और वो जगह आज भी कलकत्ता में है, लेकिन कुछ ही महीनों पहले अभी सरकार की मदद से वो जगह भी इस्कॉन को मिल गया है. ये भी एक बहुत बड़ी एक घटना है कि आगे से प्रभुपाद का जन्म स्थान है. तो क्योंकि वो नंदोत्सव के दिन जन्म होता, इसलिए उनका नाम किसी ने कहा नंदूलाल रखना चाहिए, लेकिन उनके पिता मौन गौर मौन धो ने कहा कि नहीं, अभय चरण रहेगा. तो उन दिनों में जब कुछ ज्योतिषों से पूछा गया था, तभी भी बताया गया था कि ये बच्चा जब 70 साल का होगा तो ये सागर पार करेगा, धर्म प्रचार करेगा और 108 मंदिर बनाएगा. ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी. तो उन दिनों की बात है जहाँ पे अंग्रेज हमारी रूल कर रहे थे. तो अभय चरण यानी उनके पिता ने कहा कि जो निर्भय है और पूरी तरह से कृष्ण का आश्रय लिया है, इस भाव से उन्होंने उनका नाम रखा था. तो उनके पिता वैसे बहुत एक कोई बड़े अमीर घर के नहीं थे, तो एक कपड़े की उद्योग थी उनकी. लेकिन प्रभुपाद के बचपन में एक बहुत विशेष बात आती है कि उनके घर के सामने राधा गोविंद मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर था, जो कई सालों से उनके परिवार के लोग, जो मलिक परिवार है, वो उस पूरी मंदिर की देखभाल करते थे. और प्रभुपाद जब 1 साल के थे तब से घर के जो एक सेवक होता था उनके साथ, उसके और एक मित्र थे उनके साथ, वो मंदिर जाएंगे और घंटों भर वहाँ खड़ा रह के पुजारी जी जो सेवा कर रहे हैं उसको देखते रहते थे. तो ये उनकी बचपन की एक विशेष बात थी. और जब 1.5 साल हुए तो एक ऐसी घटना हो गई कि उनको बुखार आया, टाइफाइड हो गया. तब
तो उनके परिवार के डॉक्टर ने कहा कि इनको चिकन सूप देना चाहिए. तो मोहन गौर मोहन देखा तो ये तो हमारे घर में होता ही नहीं है. तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम मैं मेरे घर से बना के लाऊंगा, आप दे देना. तो गौर मोहन दे ठीक है अभी मेरे बच्चे के सेहत के लिए ज़रूरत है, तो उन्होंने मान लिया. लेकिन जैसे ही चिकन सूप अभय चरण के मुंह को स्पर्श किया वैसे थोड़ा अंदर जा ही ना सका, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, उल्टी कर दी. तो 1896 के बाद चार साल के बाद 1900 यानी 1900 में जैसे अभी कोविड का प्रकरण है वैसे प्लेग की बीमारी आई. कहीं लोग देहा छोड़ दिया इस पैंडेमिक. लेकिन उन दिनों में शुरुआत में संकीर्तन हुआ था, तो कोई वहाँ पे एक बाबा जी थे, उन्होंने संकीर्तन कर कर कलकत्ता में उन्होंने निकाला. तो हमारे अभय चरण भी उसमें शामिल हुए थे उस छोटे उम्र में, यानी चार साल की उम्र. और विशेषकर की बचपन की बात है कि उन्होंने अपने पिता को बचपन से ही देखा था क्या कर रहे हैं. प्रभुपाद जब इस्कॉन संस्थापन किया उसके बाद भी कहने लगा कि मैं सब कुछ मेरे पिता से सीखा था, मेरे गुरु ने मुझे किताब कैसे लिखना चाहिए और पुस्तक पब्लिश प्रिंट पब्लिश और कैसे उसे वितरण करना चाहिए मेरे गुरु ने दिखाया. तो प्रभुपाद अपने अभय चरण उन दिनों में कि प्रभुपाद बाद में याद कर रहे कि उनके पिता ने उनको एक बार कहा जब भी कोई समस्या होती थी, क्योंकि उनके घर में बहुत सब कुछ था ज़रूरत थी, लेकिन वो ऐसे भी नहीं कि बहुत अमीर घर के थे. तो उनके पिता कभी कहते उनके कृष्ण जो है उनके पास कई हाथ है, अगर देना चाहते तो हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे, अगर वही 10 हाथ से अगर हमारे से छीनना चाहते हैं तो भी हम कुछ भी करेंगे तो रोक नहीं सकेगी, ऐसे ये उनके पिता से सुना था. माँ और पिता में दो एक विशेष थी. उनकी माँ चाहती थी कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा हो जाए, बैरिस्टर बन जाए, लेकिन गौर मोहन दे की इच्छा ये थी कि मेरा बेटा शुद्ध एक राधा रानी का भक्त बने. तो हमेशा अपने बेटे को उस नज़र से देखते थे. माता का बहुत प्रेम था, जिनका नाम श्रीमती रजनी था, तो वो सिर्फ अपने बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा यही देखते. तो इन दोनों पिता माता के इस प्रेम में अभय चरण बड़े हुए. कई ऐसे छोटे छोटे घटनाएं हैं उनके, वैसे हमें बहुत कुछ साधारण लगेगा, तो वो भी हर एक बच्चे की तरह बहुत ही शरारत करते थे, नटखट थे. कभी उसको पिता कहीं बाजार में एक खिलौना लेत के देते थे तो दूसरा भी मांगते थे, बोलते दोनों हाथ में चाहिए. तो इस तरह उनका जो जीवन में उन्होंने देखा कि माँ और पिता के प्रेम में उनका परवरिश हुआ. एक बार ऐसे हुआ कि ये जो कलिंगर होता है उसका जो बीज है वो खाते खाते वो अंदर पेट में चला गया, तो उसके जो मित्र उसको डराने लगे, अभी जो बीज अंदर चला गया है वो फिर तुम्हारे पेट में बड़ा हो जाए कलिंगर. वो डर के अपने माँ से आके बोलने लगे. तो फिर माँ जैसे यशोदा माता कैसे नो बोलते कुछ भी कुछ नहीं होगा, मंत्र ऐसे मंत्र प्रेम से मंत्र बोलकर उसको. फिर उनके समय आया स्कूल जाने का, तो स्कूल जाना नहीं चाहते थे. अभय चरण बोलते मैं क्यों स्कूल जाऊँ, मैं तो पूरा दिन खेलना चाहता हूँ. फिर एक नौकर को उनके साथ भेजा जाता था, उनको हाथ में पकड़ के ले जाकर टीचर के सामने खड़ा किया जाता, ऐसे बार बार. फिर उसके बाद वो अपने आप जाने लगे. फिर 5 साल की उम्र में जो बहुत ही एक विशेष जो क्योंकि उनके घर में इतना अच्छा संस्कार था, तो उनके जो पड़ोसी जो 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 रास्ता हैरिसन हैरिसन 150 जो रोड था वहाँ पे हर साल ये मलिक परिवार का जगन्नाथ रथ यात्रा होता, तो उसको देख के अभय चरण कहते थे कि मैं खुद करना चाहता हूँ. तो अपने मित्रों को सब मिलाकर एक छोटा सा रथ बनाकर, रथ मिल नहीं रहा था, फिर एक कोई औरत ने दिया, तो उस रथ से जैसे उन्होंने देखा है कैसे करता है वैसे वो एक लीडर की तरह सबको इकट्ठा करके आठ दिन तक उस घर के सामने आठ दिन तक ये रथ यात्रा चलती थी और उनका उम्र सिर्फ 5 साल के थे वो। और कोई बड़े लोग देखते हैं, अरे ये क्या चल रहा है, हमें क्यों नहीं बुलाया, अरे ये तो बच्चों का है गौर मोदी, ये तो बच्चों का है, अरे ऐसे क्यों कर रहे। तो फिर घर के सब लोग अपने यहाँ से सब व्यंजन बनाकर ला के देते थे। तो ये शुरुआत का ये उनका ये जो रथ यात्रा है, जो बड़े होने के बाद भी हमेशा एक इच्छा थी उनको कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। फिर ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि मुझे भी राधा कृष्ण का विग्रह, तो उनके पिता ने छोटा सा राधा कृष्ण का विग्रह ला के दिया। तो उनके बचपना से ही वो भगवान के विग्रह की सेवा करते, वो और उनकी बहन सेवा करना, भोग चढ़ाना, कीर्तन करना, श्रृंगार करना, ये वो उम्र से ही उनकी चालू थी। तो ये था उनका बचपन जहाँ पे वो ब्रिटिशों को देखते थे और देखते थे कि ब्रिटिश राज में किस तरह के जो ऊंचे लोग हैं वो लोग घोड़े में सवारी चल रहे हैं और जो भारतीय लोग हैं उनको अलग जगह पे, तो इस तरह का एक तिरस्कार भाव सब देखते आए। लेकिन 12 साल की उम्र में उनकी एक दीक्षा हुई, वो भी एक पारिवारिक दीक्षा होती है ना, लेकिन अभय चरण कुछ प्रभावित नहीं हो गए क्योंकि वो दीक्षा इस तरह का था, एक बहुत एक सिद्धि योगी वो आके कर रहा था कि मेरे गुरु यहाँ से वो लाके दे सकते, ऐसे चमत्कार कर सकते, तो वो कोई प्रभावित हो गए नहीं। फिर 16 साल की उम्र में उनका माँ का देहांत हो गया। तो 16 साल की उम्र में जब देहांत हो गया उसके बाद सिर्फ वो पिता के प्रेम में ही वो, तो ये उनके जीवन में बहुत ही एक विशेष आता है 16 साल की उम्र के बाद। सो 1914 में महायुद्ध हुआ, पहला महायुद्ध, अभय चरण देख रहे थे क्या हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ उससे कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कॉलेज 1916 में कॉलेज गए, स्कॉटिश नाम का जो अंग्रेजों के राज्य में होता, तो वहाँ पे कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश और संस्कृत विषय पे ज़्यादा ध्यान दिया था और उन्होंने एक ड्रामा में भी भाग लिया था, चैतन्य लीला ड्रामा, और वो कालिदास के ऐसे विषयों को संस्कृत इंग्लिश कथा ऐसे उसमें बहुत ध्यान देते थे। कभी एक बार प्रोफेसर उनको वेद को निंदा करने लगे तो उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो तो एक विद्यार्थी थे कुछ बोल नहीं सके, लेकिन उनके ध्यान में था कि अंग्रेज लोग जब तक हैं हमने हमारी संस्कृति के बारे में हमें, तो इस तरह उनका दिन ज़्यादा कॉलेज के विषयों में जाता था, घर जाकर असाइनमेंट करना, प्रोजेक्ट करना उन दिनों में भी बहुत होता था। तो तभी एक दिन उनको सपने में वो राधा कृष्ण आकर बोले कि तुमने जो वो छोटा विग्रह दिया था उनके पिता, उन्होंने उनको बॉक्स में रख दिया था क्योंकि कॉलेज में इतने व्यस्त हो गए थे कि वो भूल गए थे। फिर वो सपने के बाद उन्होंने फिर से निकाला, तो उनके एक विशेष बात है कॉलेज में, सुबह सुभाष चंद्र बोस उनसे 1 साल सीनियर थे, तो उनके मुख से वो सुनते थे कि भारत स्वतंत्रता होना चाहिए, तभी वो गांधी जी के बारे में सुने। तो उम्र बहुत कम था उनका, 16-17, तो उन दिनों में उनको एक, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे, वो कहते कि सच्चा जो है स्वतंत्रता वो है आत्मा का इस शरीर से मुक्त होना। लेकिन जब उनको बताया जाता था कि अगर हम अंग्रेजों से मुक्त हो गए तो ही ये विषय को हम दुनिया में बता सकते हैं, तो ये दोनों विषय को रखते समय वो सोचने लगते थे क्या करना चाहिए मुझे। तो आगे स्वराज, क्योंकि वो कॉलेज जिस कॉलेज में जाते थे वो तो अंग्रेजों का कॉलेज था, अगर वहाँ पे थोड़ा भी पता चलता है कि ये राष्ट्रवादी बन रहे हैं या कुछ ब्रिटिशों के खिलाफ बोल रहे हैं तो फिर उनको कॉलेज छोड़ना पड़ता था। लेकिन धीरे से उन लोग मित्रत्व को लोग मिलते थे ऐसे इस विषयों को बात करने के लिए। फिर एक समय आया कि उनको समझ में आया कि अंग्रेजों के साथ ये सही नहीं है, इनका जो भी है, तो उन्होंने डिग्री को भी अपना त्याग कर दिया। फिर डिग्री मिलने के बाद फिर पहली बार वो जगन्नाथपुरी गए, अकेले गए, तभी उनका विवाह भी हो चुका था, तो उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया था। तो तभी वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि किस तरह क्या हो रहा है, किस तरह के साधु लोग थे वहाँ पे, तो थोड़ा सा विचलित हो गए कि साधु के नाम पे कुछ गलत काम हो रहा है जगन्नाथपुरी में। फिर आने के बाद उनके पिता ने कहा अभी तुम तो शादीशुदा हो और तुम्हारे पास डिग्री है, उन्होंने डिप्लोमा तो छोड़ दिया, फिर उनके परिवार के वही डॉक्टर जो कार्तिक बोस हैं, उनकी एक निजी उनकी एक व्यवसाय थी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उनमें सीधा कम उम्र में उनको डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया गया। तो दूसरे लोग 40 साल से कर रहे, वो लोग सब आश्चर्य कर रहे, इतना छोटा यंग लड़के को आप डिपार्टमेंट मैनेज। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि मैं इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ, ये कोई भी चेक चेक साइन करेगा मुझे मालूम है गलत नहीं करेगा, और मेरा मित्र का बेटा है। इस तरह उनका ये शुरुआत हुआ व्यवसाय में। और कुछ ही समय में उनको पता चला, गांधी जी ने बताया कि ये जो अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहाँ से कॉटन जो होती है ना रुई, उसको यहाँ से ले जाते थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड से कपड़ा बनाकर यहाँ भेजते थे हमारे लोगों को ही ज़्यादा दाम में। तो इसलिए अभय चरण दे ने भी निर्णय किया कि अभी से हम ब्रिटिश का जो भी है बहिष्कार करेंगे, सब लोग मिलकर उसे। तो फिर गांधी जी का जो एक आंदोलन था कि हर एक लोग कपड़ा अपना ही खुद का बनाएंगे, तो अभय चरण देवी खादी पहनने लगे। तो ऐसे खादी पहन के आगे का कथा, किस से उनकी मुलाकात हो गई, ये आगे के वक्ता बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आदिकेशव प्रभु जी कि आपने लगभग श्रील प्रभुपाद जी का 25 साल का प्रवास, जो जीवन प्रवास है, अति अल्प समय में यहाँ हमें प्रस्तुत किया, जिसमें कैसे बचपन में उन्होंने रथ यात्रा निकाली और हमें प्रोत्साहित किया। तो आगे का जी प्रभुपाद जी का जीवनी है, हम छोटी सी जो नाटिका है उसमें देखेंगे कैसे प्रभुपाद जी है पहली बार अपने जो गुरु है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले। तो नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमान जनार्दन लीला प्रभु और उनके सब सहकारी। तो मैं उनको विनती करूंगा कि वो मंच पर आए।
हर एक महान पुरुष के जीवन में ऐसा एक विशेष समय आता है जब उसके जीवन का कालांतर हो जाता है और जीवन का प्रभाव बदल जाता है, इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो ये जो साल है 1922, हरि बोल, 1922, ये हमारे प्रभुपाद के जीवन में बहुत ही विशेष साल है। और हमें एक सो याद रखना है, जब भी प्रभुपाद 26 साल के थे तो ऐसी एक दिलचस्प और जबरदस्त घटना हुई जिससे कि प्रभुपाद का शेष जीवन पूरी तरह से जिस दिशा में जा रहा था, क्योंकि वो बन रहे थे क्या, वो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी बन रहे थे, गांधी जी के आंदोलन में जुड़ गए थे, लेकिन इनको मिलने के बाद जीवन का प्रभाव बदल गया और उसके बाद प्रभुपाद का जीवन बिल्कुल अलग प्रकार से उबर के बाहर आता है। आइए देखते हैं क्या होता है।
पब्लिक ला पाठ मारो।
हरेक्स
नमस्कार बाबू।
अरे नरेन आओ बैठो। और किधर है भाई, कितने दिन हो गए, नजर ही नहीं आ रहे हो।
अरे भाई मैं तो आपके सामने ही बैठा हूँ।
अच्छा 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 मजाक है। नरेन एक दो मिनट। हाँ अरे काका, ये सरकार बाबू को थोड़ा देखे आओ। और हाँ सुनो, आते समय थोड़ा जल भी लेके आइए। अच्छा और बताओ क्या हाल है।
तो काम हो गया।
काम का क्या है, काम तो होता ही रहता है। और बताओ।
मैं आपको कहीं ले जाने आया हूं।
कहां?
यही कहीं।
यही कहीं
किसी से मिलवाना है।
किससे?
यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बड़े विद्वान साधु है।
अच्छा, लेकिन देखो इतना सब काम पड़ा हुआ है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी जाएंगे।
अरे अभय, आप इतने धार्मिक होकर भी किसी साधु से मिलने के लिए इनकार कर रहे हो? अरे वो बहुत बड़े साधु है, कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, मायापुर से आए हैं, यही कहीं उल्टान डंगा में रहते हैं, एक बार चलो तो सही।
अच्छा, लेकिन देखो भाई, वो अगर इतने बड़े साधु हैं, तो यहाँ कलकत्ता में क्या भीख मांगने आए हैं?
अरे अभय,
आप देखो, ऐसे साधु मैंने बहुत देखे।
अभय,
इनसे मिलने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
एक बार चलो तो सही, आप इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो, आप एक बार चलोगे तो हमें भी पता चलेगा कि वो कौन है।
अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। अरे घोष बाबू, थोड़ा हम बाहर होके आते हैं।
हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे हितकारी न थे न है और दुनिया में कभी आएंगे। मनुष्य जो हमें लाभ सोचता है उसमें हमारा लाभ ही होगा, ऐसे नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जो हमें जो संदेश कृष्ण भक्ति का दे रहा है वो हमें सबके लिए कल्याणकारी। ये खाली जाति और देश के लिए मर्यादित नहीं, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का संदेश हमें उसका प्रचार करना यह हमारा परम कर्तव्य। तुम चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है वो कोने कोने में क्यों नहीं करते आप?
जी मैं,
हाँ
क्षमा कीजिए, लेकिन ऐसे वातावरण में हमारा कौन सुनेगा, जबकि पूरे बच्चों से लेकर बूढ़े और जवान तक पूरा देश के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या योगदान है?
आप ठीक कह रहे हो, देशभक्ति करना यह हमारा कर्तव्य है, लेकिन तू यह हमारा परम कर्तव्य नहीं। आज आप अंग्रेजों से स्वतंत्र पाएंगे, लेकिन आप क्या स्वतंत्र हो सकते हैं? राजनीति बदल सकते हैं, राजनीति नहीं बदल सकती। इसलिए मनुष्य के हित के लिए, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए हमें कृष्ण भावना का, चैतन्य महाप्रभु का संदेश सबके कल्याणकारी वो हर कोने में पहुंचना चाहिए, यही हमारा, इसमें हमारा सबका कल्याण होगा। इसलिए आप जैसे पढ़े लिखे, उन्होंने आपने क्या है कृष्ण भक्ति समझना चाहिए और यही ज्ञान हम सबको सिखाना चाहिए, ही इसमें हमारा सबका कर्तव्य है। आज की कथा हम यही समाप्त करते, इसलिए आप मेरे पीछे महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो खूप बरं आहे, म्हणतात धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडन बीज वाढवावे नाम। खरं तर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है वो, उन्होंने भक्ति का जो सिद्धांत है वो बहुत अच्छी तरह से प्रस्थापित किया और श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी जो शिक्षा है पूरी दुनिया में फैला दी। तो कैसे पहले ही वो 1922 साल में प्रभुपाद जी से मिले और पहली ही भेंट में प्रभावित हुए और उन्होंने आगे जाके प्रचार किया। या बहुत ही कम समय में जनार्दन लीला प्रभु और उनके टीम ने यहाँ प्रस्तुत किया। हम तीन बार जोर से हरि बोल बोल के उनको धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं हम सब की ओर से श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी को विनती करूंगा कि वो मंच पे आए और कथा के रूप में प्रभुपाद जी का जीवन प्रवास से हमें बताइए।
हरे कृष्ण उमज्ञात मीरांत ज्ञानांजन शिलाक चक्षुर्मित तस्मे श्री हरे कृष्ण। अभी इतने सुंदर नाटिका से प्रभु जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि कैसे अभय चरणे श्रील प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिलते हैं और 21 फरवरी 1922 जो कि अगले साल श्रील प्रभुपाद का श्रील भक्तिदान सरस्वती को मिलना 100 ईयर पूरा होगा। तो अभी हम लोग प्रभुपाद का आविर्भाव दिन का 125वां आविर्भाव दिन मना रहे हैं, लेकिन अगले साल जो श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए 100 ईयर पूरे होंगे। तो इतना महत्वपूर्ण है कि श्रील भक्तिदान सरस्वती का जो तीव्र इच्छा है तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से कि कैसे जल्द से जल्द चैतन्य महाप्रभु का संदेश सारे संसार में फैले। और श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जो भी आते थे, जब पढ़े लिखे देखते थे, उनसे कहते थे कि आप पढ़े लिखे लोग हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु का संदेश सारे संसार में प्रचार करो। और जैसे कहते हैं कि जमीन जब हम बीज डालते हैं साथ साथ जमीन भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो वैसे श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जब कहते हैं कि पहली मीटिंग, ऐसा नहीं कि पहले प्रभुपाद जी उनसे गुरु महाराज से मिले थे, पहली बार गए और एक तो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि श्रील प्रभुपाद कॉलेज के दिनों में गांधी बात जो था उसमें अपने आप को उन्हें झोंक दिया था। और इसलिए जब उन्होंने 1920 में कॉलेज कंप्लीट किया और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भी जो डिग्री नहीं ली उन्होंने, कॉलेज कंप्लीट किया लेकिन डिग्री नहीं ली क्योंकि उनको ऐसा था कि एक कॉलेज पढ़कर हम कोई नौकर नहीं बनना चाहते हैं किसी के। तो इसलिए जब पहली बार जब श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते कि क्यों नहीं आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश सारे संसार में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, तो अभय चरण कहते कि हम पारतंत्र में हैं, हम ऋतुओं के अंदर में हैं, कैसे हम अपना अपनी जो संस्कृति है ये सारे संसार में कैसे प्रचार कर सकते हैं। इसलिए ये जो डाउट है, ये जो शंका है, लेकिन जब श्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर उनसे कहते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रचार करना इतनी अत्यावश्यक भाव है, इतना इमरजेंसी है कि किसी भी राजनीतिकता या किसी भी संसार के जो भौतिक संस्कार जो बदलाव है इसके लिए रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी घर को अगर आग लगती है तो हम बाजू में अगर कोई रहता है जिसको हमारा मातृभाषा पता नहीं है तो हम आग लगी है ये बताने के लिए उसकी मातृभाषा सीखने नहीं जाते हैं, किसी एन केन प्रकार है ना उसके पास वो संदेश देना है कि आग लगी है। वैसे श्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इस संसार की जो राजनैतिकता है, इस संसार के जितने भी हम भौतिक स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं ये मानव जाति को पूरी तरह से सुखी या संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण को शरण नहीं जाते, तब तक मानवता का पूरी तरह से उद्धार होना नामुमकिन है। इसलिए आप किसी बदलाव के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सुंदर ड्रामा में बताया कि
जो राजनीति है, राजनेता है, बदलते रहेंगे। लेकिन इस संसार में भले सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, क्या है? कृष्ण भावना की कमी है। देयर इज ओनली वन थिंग इज लैकिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना की कमी है। और ये जो क्षणभंगुर माया मोह है, इसके परे जाना और परम सत्य का पहचान करा देना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे अभयचरण सुनते हैं और जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो वो सोचते, क्योंकि उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, न तो उन्होंने बहुत बार उनसे मिले थे, लेकिन जैसे अभयचरण बाहर गिरते हैं, तो अपने आप को पहले तो गांधीवाद में पूरी तरह सम्मिलित है, लेकिन जैसे वो रूम से बाहर निकले, तो अपने आप को सोचने कि मैंने, मतलब अजान्तपन से मैंने अपने आप को इस स्वामी जी को समर्पण कर दिया है अंदर से। वो ऐसा नहीं कि उनको कुछ फिलोसफिकल कन्विंसन ये तो था, लेकिन अपने आप ही अंदर से वो भावना आने लगे कि मैंने अपने आप को कैसे समर्पण कर दिया भक्तिशील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी को। और जो नरेंद्र थे उनसे वो कहते हैं कि मैंने कई साधु देखे हैं, कई प्रकार के संप्रदाय देखे हैं, लेकिन इनसे मिलने के बाद अब लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, बहुत ही विद्वान विभूति के हाथ में है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से फिर घर जाकर बार बार अभयचरण गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन बार बार उनके मन में वही विचार आते हैं कि किस तरह से जो आंदोलन है इसको आगे ले जाना है। फिर अभयचरण ने जो वहाँ गौड़ीय मठ है वहाँ जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, और अलग अलग प्रकार के सेवाओं को स्वीकार करते हैं। भले गृहस्थ आश्रम में जैसे उनके जो कंपनी थी दवाई बनाने की, उसमें कार्य करते थे, लेकिन जब भी उसके लिए बाहर जाते थे भ्रमण करने के लिए, तो कहीं ना कहीं गौड़ीय मठ में जाते थे, वहीं भक्तों का संग करते थे, और ट्रैवलिंग में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ वो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करना, प्रवचन करना, इस तरह से वो करने लगे, और पूरी तरह से इस आंदोलन से श्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर से जुड़ गए। और फिर ऐसे भ्रमण करते समय जब एक बार वो जब श्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर की परिक्रमा चल रही थी, वृंदावन ब्रज परिक्रमा, उसमें वो वृंदावन आते हैं, फिर वहाँ क्या प्रसंग होता है हम आगे देखते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। तो लगभग 1922 से लेके 1933 तक का जो प्रवास है प्रभुपाद जी का, हमने नाटिका के रूप में और कथा के रूप में यह देखा। तो अभी श्रील रूपनाथपुर जी का हम धन्यवाद करेंगे तीन बार हरि बोल बोल के, कि उन्होंने मार्गदर्शन किया हमें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी खानिवली जो पंचक्रोशी है, वहाँ का जो भक्त समुदाय है, वो किस तरह से प्रभुपाद जी का दीक्षा हो रहा है, ये प्रसंग नाटिका के रूप में यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वृंदावन में गए थे अपने निजी भक्तों और दोस्तों के साथ। तभी एक प्रसंग आता है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का प्रवचन और मंदिरों का दर्शन एक ही वक्त आता है। तभी एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी का प्रवचन सुनने को महत्व देते हैं। तो आइए किस तरह से प्रभुपाद जी कथा को महत्व देते हैं, ये प्रसंग इस नाटिका के रूप में हम यहाँ देखते हैं।
भगवान श्री कृष्ण एक शक्ति है, उनकी लीला में भी एक अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति को हम नील शक्ति कहते कहते हैं। हम यहां से देख सकते हैं, पूरे वृंदावन धाम को देख सकते हैं। वास्तविकता से ये स्थान है श्री भगवान श्री कृष्ण का, उस परमेश्वर का, उस चिंतामणि का। उस चिंतामणि के धरती में ये पानी बहता है, लेकिन ये पानी नहीं है, ये अमृत है। हम अपनी दिव्य आंखों से ये बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, लेकिन ये वृक्ष नहीं है, एक कल्पवृक्ष है। अरे आप तक कहां थे?
हम स्थानिक मंदिरों के दक्षिणा के लिए गए।
श्रीमद् भागवत पर दिया जा रहा व्याख्यान अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा सुनने के बजाय आप देव देवताओं के दर्शन के लिए जाना, ये अपने जीवन का समय व्यर्थ बताने के बिताने के बराबर है। आप ये तो एक खुली आंखों का व्यायाम हुआ, एक खुली आंखों का मसाज करने के बराबर हुआ। आप अपने आध्यात्मिक परमेश्वर का रूप अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, हालांकि उसे सुनना पड़ता है, अपने खुली आंखों से सुनना पड़ता है। जैसे जैसे ही आप सुनोगे वैसे ही आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपकी विवेक बुद्धि आध्यात्मिक रूप से बच जाए आध्यात्मिक रूप से बन जाएगी। इस प्रक्रिया को हम स्तोत्र पंथ भी कहते हैं। जैसे ही आपकी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी, परिणाम स्वरूप आपको आपके परमेश्वर का दर्शन श्रेष्ठ रूप से ही हो जाएगा। लेकिन सर्वोच्च वास्तविकता ये भौतिक स्तर से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैं अपने बात को फिर से दोहराता हूं, ए भक्तगणों ध्यान से सुनो, अपने खुली आंखों से सुनो, कि अपने ध्यान से सुनने के बजाय ध्यान अपने अंदर क्रिएट करोगे तो आपको आपके परमेश्वर का दर्शन निश्चित रूप से ही हो जाएगा।
10 अनमोल वर्ष हो गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका आपके लिए। श्री प्रभुपाद जी बताइए, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ?
अरे चिंता मत करो अभय चरण, समय आने पर श्री कृष्ण स्वयं अपना कार्य सिद्ध करेंगे।
ये तो आपकी कृपा है।
अरे श्री चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य है संकीर्तन, ये सारे विश्व में जब फैल जाएगा, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में फैल जाएगा, तब आप उसमें समर्पित हो जाना। भगवान श्री चैतन्य प्रभु स्वयं अपनी कृपा आपके ऊपर अर्पित करेंगे।
आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए।
हाँ, मैंने पहले से ही निश्चित किया है आपको दीक्षा देने का, आने वाले पूर्णिमा के दिन इलाहाबाद में। तब तक प्रसिद्ध अभिचरण आप खूब थक गए होंगे, अब आप जाके विश्राम कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, शृण्वत श्रद्धया नित्यम गुणस्तश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते रुधि। तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट करने के लिए सबसे हमें पहले सुनना चाहिए। तो कैसे इस नाटिका के रूप में ये भक्तों ने हमें बताया कि श्रवण का महात्म्य, भगवान को आंखों से देखने से पहले कान से हमें सुनना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो अभी कथा के रूप में मैं श्रीमान निमाय लीला प्रभु को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि प्रभुपाद जी के लीला के बारे में हमें और सुनाइए। हरे कृष्ण। तो निमाय लीला प्रभु अपना कथा से पहले और एक ड्रामा जो है वाड़ा भक्त वृंद यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये ड्रामा क्या है इसकी प्रस्तावना करने के लिए मैं अभिमन्यु प्राण प्रभु को यहाँ निमंत्रित करता हूँ।
हरे कृष्ण। तो जैसे हमने 1922 को पहली बार प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलते हैं उल्टा डंगा जंक्शन में, और बोला जाता है जैसे ही प्रभुपाद उनको देखते हैं और प्रभुपाद अपने हृदय में बोलते कि पहली बार मैं जीवन में किसी के सामने हारा, लेकिन हार के मेरे हृदय को उन्होंने जीत लिया और तब से मैं उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और उनको गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद जो उनको दीक्षा मिलता है, ये जाके 1933 अलाहाबाद में उनको दीक्षा मिलता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो किस तरह ये दीक्षा मिलता है वो लीला आज हम यहाँ पर दर्शन करेंगे वाड़ा भक्त वृंद से। तो प्रभुपाद उनके दुकान में बैठे हैं, जैसे कि हमको पता है प्रभुपाद बिजनेस करते थे, मेडिसिन का बिजनेस करते थे, तो दुकान में बैठ के बैठे हैं और देखिए लीला कैसे आगे बढ़ रहा है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
अतुलानंद प्रभु आप कैसे आए?
ठीक है अभय बाबू, आप कैसे हैं?
मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपका प्रचार कैसे चल रहा है?
आप लोग सब व्यापारी लोग डोनेशन दे रहे हैं, उसमें से सब प्रचार चालू है।
अच्छी बात है, वो तो भगवान की देन है, हम सिर्फ आपके आगे बढ़ा रहे हैं।
वो तो चल रहा है सब।
अच्छा चल रहा है।
हाँ
सुना है गुरुदेव प्रयाग आए हुए हैं।
हाँ आया है, अलाहाबाद में आया है।
आए हैं, दीक्षा का भी कार्यक्रम होने वाला है।
हाँ दीक्षा का भी होने वाला है।
तो पहले बताया था हमको कि पूर्णिमा को हम प्रयाग आ रहे हैं, तो आप हमारा नाम जरा वहाँ पर फिर से सूचित कर दीजिए दीक्षा के लिए।
हाँ अभय बाबू, हम प्रयास करेंगे, गुरुदेव को बताएंगे आपका दीक्षा के बारे में।
जरूर जरूर।
चलो हरे कृष्णा।
सुनती हो?
क्या हुआ?
अरे बहुत अच्छी खबर है।
हाँ
हाँ सच्ची, यहाँ पर गुरुदेव आ रहे हैं प्रयाग में यही पूर्णिमा को, और दीक्षा भी देने वाले हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे और दीक्षा लेंगे।
आप दीक्षा ले लीजिए, मैं आपको सोच के बताती हूँ। भाई बाबू गुरुदेव आ गए हैं।
गुरुदेव के पास चलेंगे हम।
चलो हरे कृष्णा।
गुरुदेव अभय बाबू के बारे में आपको बताया था?
हाँ मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ।
वो कभी भी हर समय वो हरि कथा सुनते हैं, कभी भी हरि कथा से उठ के नहीं जाते। मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ और आज मैं उनको अवश्य मेरे शिष्य के रूप में स्वीकार करूँगा। अभी दीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया जाए।
अरे वो नाम 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 देना था ना।
आज से प्रभु जी का नाम होगा अभयाचरण अरंद दास।
हरि
बोल,
हरि बोल।
हरे कृष्णा। सब लोगों का तो खाली दीक्षा होता है, एक ही दिन में अभय बाबू का दीक्षा भी हो गया और ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, ये तो आश्चर्यजनक बात है। अभय चंद्र दास की जय।
हरे कृष्णा। तो इस तरह से वाड़ा भक्त वृंद ने श्रील प्रभुपाद जी का दीक्षा का प्रसंग है यहाँ प्रस्तुत किया। हालांकि सभी जो भक्त वृंद यहाँ नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत ही अल्प समय में उन्होंने ये नाटिका का प्रैक्टिस किया और यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे प्रबोधन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाड़ा भक्त वृंद। अभी मैं निमाय लीला प्रभु को निवेदन करता हूँ कि वो अपना श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हमें कथा सुनाएं।
हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी के गृहस्थ जीवन के बारे में हम ज्यादा सुनते नहीं है। जब आचार्य बनने के बाद हम बहुत सारे पास टाइम, बहुत सारे लीलाएं सुनते हैं, लेकिन अभी हम ड्रामा में जैसे देख रहे हैं एक दो छोटे छोटे तो लीलाएं हैं, बट अगर उनका गृहस्थ जीवन देखेंगे बहुत ही एग्जेम्पलरी है, बहुत सारा चीज हमको सीखने के लिए मिलेगा। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने जब भागवत प्रेस जब चालू किया था, तब पहले पुस्तक जो प्रिंट हुए थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का चैतन्य चरितामृत का टीका, विश्वनाथ ठाकुर जी का भगवद्गीता का टीका, ये सब पहले प्रिंट हुए थे। और प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ जीवन में रोज ये पुस्तक पढ़ते थे। और किस तरह हर गृहस्थ के जीवन में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम्स इधर ऊपर नीचे जैसे होता है, बोला गया 1920s में जब उनका पहला पुत्र जब जन्म हुआ तो उनका फाइनेंशियल नीड्स बढ़ गया, आर्थिक नीड्स बढ़ गए, तो प्रभुपाद जी ने उसको पूर्ण करने के लिए डॉक्टर बोस के फार्मेसी में एजेंसी लिया उन्होंने। उस समय पूरा नॉर्थ इंडिया का एजेंसी श्री प्रभुपाद जी को मिला और उसी संदर्भ में वो अलाहाबाद प्रयाग शिफ्ट हुए थे। और ये पूरा जो पास्ट टाइम आप देख रहे थे उस समय उसी संदर्भ में हुआ था। और प्रभुपाद जी का स्केड्यूल भी बहुत स्ट्रिक्ट था, बराबर 8 बजे वो फार्मेसी पहुंचते थे और बराबर 12 बजे रिटर्न आते थे दोपहर को, और फिर से लेट दोपहर को फिर से वापस फार्मेसी जाते थे। ऐसा उनका कहा जाता है कि उनके फार्मेसी में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी आते थे, इतना प्रसिद्ध था उनका फार्मेसी उन दिनों में। देखिए, और लीलामृत में लिखा है कि किस तरह प्रभुपाद जी अपने व्यावहारिक जीवन के लिए पाश्चात्य वेशभूषा सब पहनते थे, परंतु अपने सभ्यता, अपना जो कल्चर जो है वो कभी उन्होंने चेंज नहीं किया। जब भी वो बाहर अपने बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करते थे, हमेशा बाहर होटल वगैरह रहते थे, फिर भी स्पेशली वो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे कि जो भोजन जो खा रहे हैं वो वैष्णव भोजन ही मिले। कभी भी वो ट्रैवलिंग में भी कभी ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। और 1925 में बहुत ही एक स्पेशल चीज़ हुआ। पहली बार श्री प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे, उनका आगरा में कुछ बिजनेस मीटिंग था, उस संदर्भ में पहली बार वृंदावन गए और देखिए क्या हुआ, मथुरा स्टेशन में एक बंदर आके उनका कुछ सामान चोरी करके चले गया राइट और ऐसे, और एक एक गृहस्थ पिता होने के ना किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को भी कैसे समझाया, उनका सबसे छोटा बेटा उनको प्रभुपाद जी प्रेम से उसको पाचा बुलाते थे, तो ये बहुत ही नटखट बहुत शरारती था, बहुत हाई एनर्जी था उसका, तो उसको कैसे सिखाएं, उसको हमेशा जब वो टेबल फैन होता है ना, टेबल फैन में हमेशा उसका उंगली डालने का उसका आदत था, प्रभुपाद जी हमेशा उसको पकड़ के रोकते थे, तो लेकिन देखिए कैसे सिखाया प्रभुपाद ने, एक बार ठीक है आपको उंगली लगाया ना, चलो प्रभुपाद जी ने फैन का ऑफ स्विच ऑफ कर दिया, तो जैसे वो फैन स्लो हो रहा है बोला चलो अभी लगा उंगली, और एक बार लगाया उसने हल्का सा उसको टिंग ऐसा एक छोटा लगा, और बाद में कभी हाथ नहीं लगा, प्रभुपाद उसको हमेशा जोक करते फिर से लगाओ चलो आपको लगाना है ना लगाओ, तो देखो किस तरह प्रेम से प्रभुपाद जी ने समझाया अपने बच्चों को। और उसी दौरान जब कुंभ मेला में हमने देखा कैसे भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी आए थे पहली बार प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, और अतुलानंद ब्रह्मचारी जो अपने ड्रामा में थे इधर, और किस तरह प्रभुपाद जी का गौड़िया मठ से उनका संबंध और गहरा हो गया, और 1932 में हमने देखा किस तरह पहले जो वृंदावन यात्रा में कोसी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मिले थे, और उनका जब इनिशिएशन हुआ था हमने बहुत सुंदर नाटिका भी देखा, तो उनका घर का नाम था अभय चरण, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या क्या दिया उनको, अभय चरण एक अरविंद डाल दिया उनके नाम पे, और उसी अरविंद को प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावरज संघ के रूप में अपना इस्कॉन का लोगो देखिए वही अरविंद को वो हम सब पूरे विश्व को उन्होंने प्रदान किया, और कहा गया कि उसके अगले चार साल में प्रभुपाद जी काफी ट्रैवल करते थे, लेकिन यू नो कुछ दस वगैरह उनका उतना ही कम मीटिंग हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ, और कहा जाए उसी इलाहाबाद के दिनों में एक बार गौर मंडल परिक्रमा हो रहा था, तो ये प्रसंग जो है नयनानंद दास बाबा जी उन्होंने एक बार बोला था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनका एक एक इच्छा बहुत गाढ़ा इच्छा था कि किस तरह पाश्चात्य देशों में ये चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश जो है वो हर जगह पहुंच जाए, और वो उनकी माता भागवती देवी का अंतिम ये एक इच्छा थी, तो एक समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक प्रसंग दे रहे थे कथा दे रहे थे, और सामने सब उनके वरिष्ठ सन्यासी और ब्रह्मचारी सब बैठे थे, और उस समय जैसे भक्ति सिद्धांत सर ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है ये पूरे विश्व भर पहुंचाना चाहिए, और ये बोल के इस तरफ देख के नयानंद दास ब्रह्मचारी उधर साइड में खड़े थे उनकी तरफ देख के ऐसे देख रहे थे बहुत ऐसा गंभीरता के साथ, और सडनली उनको लगा अरे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, फिर बाद में उनको पता लगा कि अरे ये मेरी तरफ नहीं देख रहे, मेरे पीछे कोई है उनकी तरफ देख रहे हैं, तो जो मुड़ के देखा उन्होंने कौन थे वहां, अभय बाबू खड़े थे, तो उसी समय इन्होंने देख लिया कि अरे ये कुछ तो महान वैष्णव है, ये आगे जाके अपने गुरु महाराज जी का जो इच्छा जो है वो आगे निभाएंगे वो लाइक दैट, और बाद में उनके जो भी मीटिंग्स होते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ काफी फ्रेंडली काफी इंटीमेट थे, कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा जैसे ही वो अभय बाबू आएंगे तो उनको अपने रूम में लेके जाते थे, वो साथ में बैठ के जपा भी करते थे, एक बार बाय मिस्टेक क्या हो गया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक आसन पे बैठे थे, प्रभुपाद जी जाके अपने प्रभुपाद जाके उनके साइड में बैठ गए, फिर उनको लगा कि अरे बाकी सब भक्तों तो नीचे बैठ रहे हैं, फिर उसी समय उन्होंने मन में सोच लिया कि यहाँ ऐसा कभी गुरु के समान कभी बैठना नहीं चाहिए, तो वो तब से वो नीचे बैठना चालू किया। और एक और बहुत सुंदर प्रसंग आता है, ये एक भक्ति सिद्धांत के बहुत फेमस शिष्य ओबीएल कपूर, उनका नाम बाद में आदि केशव दास, तो उन्होंने ये पास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि वो इलाहाबाद में पहली बार ये दोनों मिले थे, जब इलाहाबाद गौड़िया मठ में जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे मृदंग बजाते थे ये दोनों मिले थे उस समय, उस समय ओबीएल कपूर बहुत एक बार युवक थे कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो प्रभुपाद जी ने उनके एग्जाम्स के टाइम पे उनके लिए एक स्पेशल ब्रेन टॉनिक बना के दिया ताकि वो एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई करे, उनका यू नो एकाग्रता बनाए रखे, और सचमुच काम किया वो टॉनिक। तो बाद में ओबीएल कपूर आए और उनको बोला कि देखिए आपका टॉनिक तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे वो दूसरा टॉनिक चाहिए जो आप रोज पीते हो। अरे औसत क्या टॉनिक है? अरे वो टॉनिक जिससे आपके हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा, हरि कथा और हरि नाम पे इतना रुचि जो है वो टॉनिक मुझे चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने बोला अभी ना मेरे पास वो फॉर्मूला आया नहीं, बाद में बताऊंगा आपको। और कुछ सालों के बाद एक्चुअली अभय बाबू मिले थे फिर से ओबीएल कपूर को और बोला मुझे वो टॉनिक अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया लेकिन फॉर्मूला मिल गया मुझे। और पता है वो फॉर्मूला क्या था? त्रिनाधपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये था अभय बाबू का मूड पूरे अपने गृहस्थ जीवन में, किस तरह भक्तों का सेवा करे, किस तरह जो उनके गुरु भाई जब भी आते थे उनके लिए फंड रेजिंग करो। इनफैक्ट जब बॉम्बे जब शिफ्ट हुए थे अपने ग्रैंड रोड में ही उनका निवास था और उधर ही ग्वालिया टैंक के पास उन्होंने दो रूम भी रेंट लिया था उस समय। और वो जो प्रसंग जो प्रभु जी ड्रामा में दिखा रहे थे कि उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज 1935 में आए थे बॉम्बे, वहाँ पे बॉम्बे सेंटर में डीटीज इंस्टॉल करने के लिए। और उस समय वहाँ पे जो इंचार्ज जो थे भक्ति सारंग महाराज, तो उन्होंने बोला था कि अभय बाबू को क्यों ना हम प्रेसिडेंट बनाए बॉम्बे सेंटर का। तब उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोला कि अभी नहीं, जब समय आएगा ये सब करेंगे, अभी इनको आपके आपका कुछ रिकमेंडेशन इनके लिए, सिफारिश इनके लिए लगेगा नहीं, समय आने पे ये सब करेंगे। तो ये 1935 में उन्होंने बोला था ऐसा। और ये एक कंसिस्टेंट चीज़, प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं अपने गुरु महाराज से कभी कुछ प्रश्न नहीं पूछा, एक ही प्रश्न पूछा था। एक 1936 में उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने गुरु महाराज जी को, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ। और ये है प्रभुपाद जी का मूड। और अगर हमको प्रभुपाद जी के अगर फॉलोअर्स अगर कहलाना है तो ये भी हमारा मूड होना चाहिए कि हमारा मन में हमेशा यही एक विचार होना चाहिए कि हाउ कैन आई सर्व यू। प्रभुपाद जी को और उनके अनुयायी जो है उन सबको हमको यही पूछना है, हाउ कैन आई सर्व यू। तो ये है श्री प्रभुपाद का गृहस्थ जीवन का सारांश, ये एक प्रश्न, हाउ कैन आई सर्व यू। तो ये है प्रभुपाद जी का मूड। और आगे जाके हम और नाटिका और प्रवचन सुनेंगे प्रभुपाद जी के आगे का जीवन के बारे में। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन मिले हैं जिससे कि पहले से ही पता चल गया था भक्तों को कि अभय चरणारविंद जो व्यक्ति है एक तरीके से कहते तो साधारण भक्त थे, एक साधारण गृहस्थ थे, लेकिन भविष्य में ये क्रांति करेंगे, एक क्रांतिकारी व्यक्ति है, ऐसा इंडिकेशन बहुत बार मिल चुका था आपको। जान के ये आपको शायद पता होगा ये चीज़ का कि एक ग्रंथ का नाम है भविष्य पुराण। कितने लोगों ने सुना है भविष्य पुराण, है ना? हाँ, भविष्य पुराण में हमको ये जान के गर्व होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के क्रांतिकारी कार्यों का भविष्यवाणी 5000 वर्ष पूर्व जब भी महर्षि व्यास ने यह ग्रंथ रचित किया तभी से बताया गया था कि एक सेनापति आएगा और ये क्या होगा, मंत्र उपासक। यानी कि जब भी गंगा देवी मलिन हो जाती है, जमुना देवी मलिन हो जाती है, तो गंगा जी ने भगवान से प्रश्न किया कि मैं मलिन हो चुकी हूँ क्योंकि कलयुग के इतने पापी लोग हैं कि मुझ में स्नान करते हैं और स्नान करने में क्या होता है, वो शुद्ध हो जाते हैं लेकिन मैं उनके पाप के कारण जो है मलिन बन जाती हूँ। तो गंगा जी ने ये कंप्लेन किया भगवान से कि मैं वापस शुद्ध कैसे बनूंगी। तो इस वार्तालाप में बताया गया है कि भगवान कहते हैं गंगा जी को, आप चिंता ना करें क्योंकि कुछ वर्ष के बाद मेरा मंत्र उपासक आएगा और उसके प्रचार कारण के कारण सारे संसार से शुद्ध भक्त लोग आएंगे और जब वो आपके गंगा जी में स्नान करेंगे, आपके पानी में स्नान करेंगे, तो उनकी शुद्धता इतनी होगी कि आप भी शुद्ध हो जाएंगे, राइट? तो प्रभुपाद ने वो व्यक्ति हैं जिनके स्नान करने से गंगा जी स्वयं जो क्या हो जाती है, शुद्ध बन जाती है। ऐसे हमारे प्रभुपाद महान व्यक्ति है, इसलिए प्रभुपाद की, इसलिए इस प्रकार से हमको जानना चाहिए कि ये हमारे असली सेनापति है। ये जो आप लोग सब हैं हम सब इस सेना के क्या हैं, क्या हैं, बंदर, क्या बोले, हाँ हम ये सेना के बंदर हैं। जैसे हनुमान जी हैं, प्रभुपाद जी हनुमान हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, समुद्र पार किया, है कि नहीं। प्रभुपाद ने भी समुद्र पार किया और फिर पुल किसने बनाया, रामचंद्र जी के बंदर बांधा ने बनाया। तो हम भी जो है पुल बना रहे हैं, कौन सा पुल बना रहे हैं, ताकि जीवात्मा संसार के इस छोर से वैकुंठ धाम के जो ब्रिज बनेगा उसका पुल बनाने का कार्य किसका हाथ में है, अभी आपके हमारे हाथ में है। श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छी तरह से निमाई लीला प्रभु ने सर्वप्रथम हमें प्रभुपाद जी का गृहस्थ जीवन, कैसे वो वक्तशीर थे और प्रसाद खाली प्रसाद ही खाते थे इस तरह से बताया, और द्वारकाधीश प्रभु जी ने किस तरह से प्रभुपाद को हनुमान जी की उपमा दी, और हम सबको भी बंदर बनने के लिए मतलब उनका जो प्रचार कार्य है उसको प्रोत्साहित किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ हमारा जो गोवर्धन इंग्लिश मीडियम स्कूल है, किस तरह से प्रभुपाद जी ने पुस्तक छपाई के लिए प्रयास किया, लिखने के लिए प्रयास किया, वितरित करने के लिए प्रयास किया, तो यह नाटिका के रूप में यहाँ प्रस्तुत करने वाले। हरे कृष्णा।
सुनो सुनो, अरे ए सुनो सुनो, एक कहानी, एक था राजा उसकी चार रानी।
नहीं नहीं नहीं, खत्म कर दो पुरानी कहानी, मैं सुनाता हूँ एक मॉडर्न सेंट की कहानी। सुनी थी मैंने उनके शिष्यों की जुबानी। सब 1896 शाम 4 का समय, मोहनदेव और रजनी के घर जन्मा भक्ति का प्रलय। कोलकाता के सीताकांता लेन में हुई खुशियों की बरसात, और मोहनदेव और रजनी के साथ हुई नंदूलाल के बचपन की शुरुआत। सबने कहा ये तो है राधा रानी का प्रमाण, कोलकाता में जन्मा है भारत का अभिमान। माँ का लाडला, पिता का दुलारा, नंदूलाल का बना अभय प्यारा। वंदे मातरम कहकर करते भारत भूमि की सेवा, पर राधा गोविंद जी ने खींची अलग इनकी भविष्य रेखा। नरेंद्र मल्लिक ने मिलवाया अभय को राधा रानी के भक्त से, जो प्रसिद्ध थे चारों दिशाओं में, पहचाने जाते थे सिंह गुरु के नाम से। अरे यही तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। अभय ने ठाकुर की ली शरण और ठाकुर ने लिया अभय से वचन, कर दे इंग्लिश में सारे दुनिया में प्रचार, कर दे सारे बद्ध जीवों का उद्धार। पर जवान दिल में थी एक ही आवाज, कैसे रोकेंगे भारत पर अंग्रेजों का अत्याचार, कब तक हम रहेंगे ऐसे लाचार। तब ठाकुर जी ने उठाई ये आवाज, फैला दे सारी दुनिया में हरे कृष्ण के गुण, साफ कर दे सबके दिलों से ईर्षा के अवगुण, यही रहेगा रियल सॉल्यूशन। वावा वावा। शुरू हुआ 1944 में प्रचार, करताल मृदंग बजाकर हुआ बीटी जी का अवतार। ना देखा पार, शुरू किया कृष्ण प्रचार। है ना यह एक अद्भुत कहानी, लंबा है अभय चर प्रभुपाद का सफर, भारत से अमेरिका तक का तक केवल भगवान कृष्ण थे जिनके हम सफर। अनगिनत कठिनाइयों को करके पार प्रभुपाद चले सात समुंदर पार करने भगवत प्रचार। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
सात समुंदर पार के यवनों के बाजार से सच्चे भक्तों को लाना प्रभुपाद जल्दी लौटाना।
हरे कृष्णा। तो सभी गोवर्धन इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और तो एक काव्यात्मक मुका अभिनय था, तो बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और उसके लिए मैं प्रेमलीला माताजी और सभी टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी का अगला जीवन यहाँ कथा के रूप में बताने के लिए मैं श्रीमान गिरिराज प्रभु को निमंत्रित करता हूँ।
हरे कृष्णा। तो श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु ने जी ने मुझे आदेश दिया है कि बैक टू गॉडहेड मैगजीन,
थोड़ी शांति बनाए रखे,
उसका कैसे शुरुआत हुई, श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ कैसे लिखे और पुस्तक वितरण के बारे में कुछ कहने के लिए प्रभु जी ने हमें आज्ञा दी है, विनती की है। सो 1944 का समय था जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शुरू किया हुआ सज्जन तोषणी नामक जो मैगजीन जो था वो मैगजीन बंद हो चुका था और श्रील प्रभुपाद के द्वारा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा पब्लिश होता हुआ रोज का एक दैनिक था वो भी नहीं चल रहा था। और तब श्रील प्रभुपाद जो 6 सीताकांता बैनर्जी जिस एड्रेस पे वो रह रहे थे वहां से उन्होंने 1944 में अपना सबसे पहला बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू किया। जो सबसे पहला मैगजीन था वो 44 पन्ने का था और आज जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के बिकाव के लिए हम देखते हैं कि हर न्यूज़पेपर में लोकल इश्यू भी होता है, एक लोकल सेपरेट एक एडिशन होता है। लेकिन अब आप अगर श्रील प्रभुपाद के उस पहले बैक टू गॉडहेड मैगजीन में अगर आप देखें तो उसमें संपूर्णतः वह जो न्यूज़ जो मैगजीन था वो एक वैश्विक मैगजीन था, इंटरनेशनल। वो समय कोई शांत समय नहीं था, युद्ध जोरों से चल रहा था, बमबारी चल रही थी, प्रिंटिंग प्रेस में न्यूज़पेपर ये पेपर्स जो है कहीं पर भी मिल नहीं रहे थे, गवर्नमेंट बहुत कॉशियस थी, परमिशन नहीं दे रही थी कुछ भी पब्लिश करने के लिए। और ऐसे समय में श्रील प्रभुपाद ने जो पहला जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन दिया, उसमें आज भी जो जिस प्रकार से जो राइट साइड में थोड़े से लोग हैं जो अंधकार में हैं, सामने की ओर चैतन्य महाप्रभु है जो प्रकाश है, प्रकाशमान है, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का फोटो था उस मैगजीन में। सबसे पहले बैक टू गॉडहेड मैगजीन में श्रील प्रभुपाद ने आर्च बिशप ऑफ इंडिया, उसका भगवान का प्रेम और आज की वैश्विकता के बारे में का आर्टिकल के बारे में लिखा। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और वेंडेल विल्की नामक एक लेखक ने रशिया के बारे में जो लिखा था, इस प्रकार से ब्रिटिश, अमेरिका, रशिया और अलग अलग प्रकार के धर्म और देश के लोगों को लेकर उन्होंने इस मैगजीन में भक्ति के बारे में कितना महत्व है आज की परिस्थिति में वह उन्होंने लिखा। शिला सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि सारे बैक टू गॉडहेड मैगजीन का हार्द सिर्फ एक ही था और वह था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के इंस्ट्रक्शन। हर शब्द में, हर वाक्य में, हर आर्टिकल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के उस आदेश को श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तक, अपने शब्दों के द्वारा उसको रूपांतरित करते थे। बैक टू गॉडहेड मैगजीन को प्रसार करना कोई सीधी बात नहीं थी। दिल्ली में बहुत ही सख्त गर्मी में वे जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन का वितरण कर रहे थे, तब एक दिन एक गाय ने, गर्मी के आवेश, गर्मी थी तो उसने आके श्रील प्रभुपाद को सेंग से, अपने सिंगों से धकेल दिया, गिरा दिया। श्रील प्रभुपाद जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन का वितरण कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने सामने देखा कि एक वयस्क व्यक्ति गर्मी के वजह से वहीं पर उनके सामने उन्होंने शरीर एक व्यक्ति ने त्याग कर दिया। और श्रील प्रभुपाद भी इस गर्मी में उम्र के वजह से, त्रास के वजह से वो सेमी कॉन्शियस हो चुके थे। इतनी तकलीफ श्रील प्रभुपाद ने 1944 से उठाने की शुरुआत की। जब वे वृंदावन में आए, जब राधा दामोदर मंदिर में वो जब रह रहे थे, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की प्रिंटिंग की तैयारी शुरुआत की। 1954 के समय में गोपाल चंद्र घोष, जो वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, वो लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज का प्रेम उनके रोज बरोज के डीलिंग में दिखाई देता था। उनका छोटा सा ऑल्टर था जिसमें राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जगन्नाथ जी और श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का एक छोटा फोटो हुआ करता था। जो भी प्रसाद वो लेते थे, वो पहले अपने गुरु महाराज को ऑफर करते थे और फिर लेते थे। एक बार राधा दामोदर के मंदिर के गोस्वामी ने उनको राधा दामोदर जी का जो गार्लैंड है, हार है, वो उनको पहनाने की कोशिश की। तुरंत उन्होंने वो गार्लैंड नहीं स्वीकारा और कहा कि पहले मेरे गुरु महाराज को दे दीजिएगा। जो मूल जो होते हैं, कोई भी मकान, कोई भी पेड़ के मूल या मकान का जो जमीन के नीचे का जो स्तर होता है, वो उतनी सहलाई से समझ में नहीं आता है। श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति यहां पर दिखाई देती है। एक दिन वो बीमार थे, सर पे कपड़ा बांधकर और कंबल ओढ़ के बैठे थे, बहुत ठंडी थी, उन्हें सर्दी थी, उन्हें बुखार थी। तब गोपाल चंद्र जी आके उनके पूछते, श्रील प्रभुपाद आप बीमार हैं? बोलते, हां मैं बीमार हूं, थोड़े देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। अगले दिन जब गोपाल चंद्र जी गए, तब श्रील प्रभुपाद बहुत ही स्फूर्तिमय थे और उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा, जी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, कल रात को मुझे सपने में मेरे प्रभुपाद आए थे और मेरे प्रभुपाद ने मुझे कहा, उन्होंने मुझ पर कृपा करते हुए कहा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे ये शक्ति कह दी, ये कहकर कि आप भी कृपया नरोत्तम दास गोस्वामी, श्रीवास आचार्य और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे कार्य आप भी आगे बढ़ाइए। और इसी के वजह से मेरे शिला प्रभुपाद के इस आशीर्वाद की वजह से आज मैं बहुत ही स्फूर्तिमय हूं। वो कहते हैं आगे, एक दिन शिला प्रभुपाद, ठंडी की मौसम थी और शिला प्रभुपाद के आंखों से चांटिंग करते समय अश्रु आ रहे थे, और तब गोपाल चंद्र जी ने उनसे कहा, प्रभुपाद प्लीज मुझे बताइए आज क्या हुआ। शिला प्रभुपाद ने बहुत देर के बाद में कहा, कल रात को मुझे एक ऐसी दैदीप्यमान व्यक्ति मिलने आई जिसकी आंखें बड़ी बड़ी कमल के समान थी और उनके गले में बड़ी तुलसी की माला थी जिस पर वे माला जाप कर रहे थे, और उन्होंने खाली कौपिन धार किया था। उसके बाजू में उनके छोटे भाई थे, वो भी उतने ही दैदीप्यमान थे, और उनके बाजू में उनसे भी एक छोटी एक व्यक्ति थी। हाँ, श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और अपरूप गोस्वामी के बारे में श्री प्रभुपाद कह रहे थे, और वे कह रहे थे कि इन गोस्वामी, तीनों गोस्वामियों ने मुझे कहा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए और मुझे गाइडेंस किया कि किस प्रकार से आगे जाके पुस्तकों को लिखना चाहिए, किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने मुझे सांत्वना दी है। वो कह रहे थे कि मेरे हृदय में बहुत चिंता थी कि श्रीमद् भागवत के बारे में मैं रूपांतर में कैसे करूंगा, लेकिन उनके शब्दों ने मेरे हृदय को सांत्वना दी है। सबसे पहला जब कैंटो श्रीमद् भागवतम का जब आया, तब श्रीला प्रभुपाद ने उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन वृंदावन में, यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे, उस गवर्नर के हाजिरी में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ये बहुत महत्व का प्रसंग है हमारे इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, क्योंकि इसी दिन शिला प्रभुपाद ने लस्सी, भगवान की मिठाई सबके बीच में बांटी, और उन्होंने जब प्रवचन जब दिया, तब उन्होंने उस प्रवचन में कहा कि यह मेरा जो रूपांतर है श्रीमद् भागवतम का, ये सारे जग में प्रकाश छाएगा उसके वजह से, और जग के ईस्टर्न और वेस्टर्न सारे अलग अलग देशों के लोग इस श्रीमद् भागवतम को पढ़कर भगवान के नाम का स्मरण और भगवान का अर्चन करेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो प्रेडिक्शन था कि एक दिन अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियन, पाश्चात्य लोग आकर साथ में मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, उस प्रेडिक्शन की जो नींव जो थी, वो शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद के साथ की है। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने पुस्तक का जो वितरण है उसका एक बड़ा 10,000 साल तक आने वाला जो समारोह जो है, जो महामहोत्सव है, उसकी शुरुआत की। शिला प्रभुपाद जब पुस्तक जब देते थे, सबसे पहला जब कृष्णा बुक आया था, इतना सुंदर वो पुस्तक था, और शिला प्रभुपाद ने वहीं के वहीं पर पुस्तक वितरण की शुरुआत कर दी, और जैसे पुस्तक वितरण की शुरुआत हुई, शिला प्रभुपाद ने अपने खुद के लिए भी एक भी कॉपी नहीं रखी, क्योंकि शिला प्रभुपाद जानते थे एक एक पुस्तक की कीमत पैसे में नहीं, उस पुस्तक का महत्व कितना है। ये एक एक पुस्तक उन्होंने अपने लिए खुद के भी ना रखते हुए ये बताया कि जितना हो सके उतना पुस्तकों का वितरण हमें हर समाज के, हर अंग के, हर लोगों के बीच में करना चाहिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गिरिराज प्रभु। इस तरह से प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण किया और भागवत का प्रसार किया, तो मुझे इतना ही समझ में आया कि जिस दिन, जैसे आज हम प्रभुपाद जी का 125वां आविर्भाव दिन मना रहे, लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद जी का आविर्भाव रोज हो सकता है अगर हम भागवत खोलें। जिस दिन हमने भागवत, प्रभुपाद जी का पुस्तक खोला, उस दिन हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी का प्राकट्य है। इतना समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं श्रीमान द्वारकाधीश प्रभु को यहाँ मंच पर निमंत्रित करता हूँ कि आगे का प्रभुपाद जी का जो जीवन प्रवास है हमें यहाँ प्रस्तुत करें।
प्रभुपाद का जीवन एक समुद्र के समान है। आज हम उस समुद्र से एक एक लोटा सिर्फ निकाल रहे हैं भर के और उसका कुछ स्वाद करने की कोशिश कर रहे हैं। 81 ईयर्स 81 साल का ऐसा एक मिसाल है मनुष्य सभ्यता के अंदर कि किसी ने भी मनुष्य सभ्यता में 8000 वर्ष तक कोई ऐसा मिसाल नहीं है ऐसे कोई व्यक्ति का जैसे कि प्रभुपाद ने जो 81 ईयर्स में किया 8000 वर्ष में भी नहीं हुआ है, ऐसा विशेष शक्ति प्रभुपाद के पास है। तो आगे कथा को अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो अभी हम पहुंचे हैं 1944 और गिरिराज प्रभु ने अपने को कुछ पुष्प उत्तरण के बारे में कुछ बताया। अभी 1948 में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई, वो ये थी कि प्रभुपाद के पास एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने का जो लखनऊ में था, किंतु वहाँ पर जो भी माल दिया था उसका पैसा वापस ना आने के कारण बैड डेट्स बोलते हैं उसको, पैसा नहीं आया तो पूरी जो वहीवट थी जो कारोबार था व्यवहार था वो टूट गया और बहुत उम्दा चलने वाली बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत पैसा कमाने वाली फैक्ट्री जो है वो अचानक से लखनऊ की फैक्ट्री उनकी बंद पड़ गई। ये कभी हुआ 1948 में हुआ। प्रभुपाद ने फिर एक छोटा सा फैक्ट्री डाला, वापस से अलाहाबाद गए जब जैसे 33 में गए थे वापस अलाहाबाद गए, वहाँ पर उन्होंने छोटा सा एक फार्मेसी वापस चालू किया। किंतु अब देख रहे थे कि प्रभुपाद की जैसे भी वो बिजनेस करने का प्रयास कर रहे हैं बिजनेस डेवलप होता है लेकिन कुछ कारणवश वापस से कुछ उसमें परेशानी आती है। तो जब ही पता चला कि जो फार्मेसी अलाहाबाद में थी वहाँ पर चोरी हो गई और उस चोरी के अंदर भी 7000 रुपये जो आज के कम से कम जो है 7 लाख रुपए के समान है ज़्यादा ही होंगे उसकी चोरी हो गई। तो हम सोच सकते हैं कि जब इस प्रकार से बहुत सारा कुछ जीवन में होता है तो आदमी कैसे सोचता है कि इतना दुखी हो जाएगा डिप्रेस हो जाएगा मायूस हो जाएगा नाराज हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने हर एक चीज़ को कैसे देखा, शास्त्र चक्षु जैसे हम अपनी आँखों से नहीं देखते जिसकी आँख कमज़ोर है वो चश्मे से देखता है वैसे ही प्रभुपाद ने हर चीज़ को ऐसे देखा शास्त्र के आधार पर देखा। प्रभुपाद ने स्मरण किया श्लोक का कैसे, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तत् धनम शनय। जब प्रभुपाद ने समझा भागवत के आधार पे कि भगवान जब विशेष कृपा दिखाते हैं किसी जीव के ऊपर तो सब कुछ क्या करते हैं वो हरिष्ये तत् धनम शनय सब खींच लेते हैं ताकि वो भक्त निस्सहाय रूप से भगवान को शरणागत होने के बाद पूरी तरह से उनके वश में होने के बाद वही कार्य करता है जो भगवान उनसे करवाना चाहते हैं। अभी पुस्तक वितरण के बारे में एक बहुत विशेष लीला है जो आपने शायद सुनी नहीं होगी। एक बात की बात है, प्रभुपाद अमेरिका में बैठे थे अपने भक्तों के साथ में, ऐसे रिलैक्स कर बैठे थे, प्रभुपाद का पोज बताया ऐसा ही हाथ ऊपर और ऐसे रिलैक्स बैठे हैं और अनायास ही प्रभुपाद ने अपने नित्य लीला का एक दर्शन करवाया। गुरु कृपा स्वामी वगैरह ऐसे बहुत प्रभुपाद के दिग्गज शिष्य बैठे थे। प्रभुपाद ने कहा आई वॉज विद कृष्णा, लगा कि कान खड़े हो गए, आई वॉज विद कृष्णा यानी प्रभुपाद ने अपने नित्य सिद्धक की लीला के बारे में बताया कि मैं कृष्णा के साथ था और कृष्ण ने मुझे कहा कि आप जाइए भृतुई पर जाइए और प्रचार करके आइए। तो प्रभुपाद ने आधे जग में कहा पृथ्वी, जैसे कहे अपने को आप जाइए कहाँ जाइए धारावी उल्लासनगर या फिर पाकिस्तान जाइए या चाइना चले जाइए। तो कैसे छोड़ेगा अब चाइना कौन जाएगा। ऐसे प्रभुपाद ने कहा कि तो भगवान ने कहा उनको आप सिर्फ पुस्तक लेके आइए बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। इस तरह से अपने प्रभुपाद ने उनके नित्य लीला का समावेश किया, यानी कि हमको ये समझ में आता है कि प्रभुपाद इस संसार में जो भी कार्य किए उसमें से सबसे विशेष कार्य क्या है, ग्रंथ का लिखना। क्योंकि हजारों सालों से कोई प्रकार का प्रामाणिक गीता पीटिका नहीं थी, प्रामाणिक भागवत पीटिका नहीं थी, प्रामाणिक रूप से महापुरुष की लीला का टीका नहीं था, तो संसार इस ज्ञान चक्षु ग्रंथों से वंचित था जो प्रभुपाद ने संसार को प्रचुर मात्रा में दिया है। 1950 में श्रील प्रभुपाद ने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया। धीरे धीरे से आप देखोगे जीवन में आप जब लीलावत पढ़ोगे कि प्रभुपाद अपने परिवार से धीरे 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 अपना संपर्क कम करते जा रहे हैं, उनकी प्रीति, उनका लगाव, उनकी आसक्ति जो परिवार से है वो कम होती जा रही है, और हृदय में बहुत तीव्रता से ये बाढ़ उमड़ रही है। कैसे गुरु महाराज के, उनके सरस्वती ठाकुर ने लास्ट में अपने स्वर्गवास के पहले प्रभुपाद को कहा था कि जो मैंने आपको दीक्षा में के समय जो बोला था वही कार्य आपको करना है। तो प्रभुपाद के हृदय में ये ऐसे उत्कंठा, इतना बर्निंग डिजायर हो रहा था कैसे मैं ये सिद्ध करूं। 1952 में प्रभुपाद प्रवेश करते हैं। एक बहुत बड़ा चैप्टर है प्रभुपाद का जीवन का, वो है झांसी का चैप्टर। झांसी में जब प्रभुपाद अभी जाते हैं तो वहां पर प्रभुपाद बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत नामांकित लोग हैं झांसी में। झांसी आप जानते हैं बहुत बड़ा कोई शहर नहीं है, आज भी बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन उस समय भी थोड़ा ज़्यादा मशहूर शहर नहीं था, लेकिन प्रभुपाद कहाँ भी जाने के लिए तैयार थे। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर मुल्लिक हैं, डॉक्टर सिद्धि हैं, डॉक्टर प्रभाकर आचार्य हैं, ऐसे बहुत डॉक्टरों से मिलते हैं, और वहाँ पर विशेष रूप से देखते हैं कि कुछ प्रकार का इंटरेस्ट जागृत होता है झांसी में कि लोग प्रभुपाद को सुनने के लिए आतुर हैं। आखिर एक वक्ताओं का क्या चाहिए, स्पीकर को क्या चाहिए कि कोई सुनने वाला चाहिए, राइट? तो प्रभुपाद को एक ऑडियंस मिला झांसी में जो सुनने के लिए उनसे आतुर था, और प्रभुपाद बड़े फोर्सफुल प्रीचर थे, कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया उन्होंने। बहुत साधु महात्मा होते हैं जो, एक फिलोसफी अपने भारत में इसका प्रसिद्ध उसका नाम है जतो मत ततो पत, जतो मत ततो पत, यानी कि ये भी ठीक है, आपको ये लगता है ये भी है, तो ये भी अच्छा ही है, ये भी कर सकते हैं, अच्छा वो भी अच्छा है, यानी जैसे जैसे जिसका मत हो वैसा उसका पथ बन सकता है। प्रभुपाद ने ये मत को कभी स्वीकार तो खंडन किया। जो भी गीता भागवत का परंपरागत मैसेज है वही अधिकृत है। उनके स्ट्रांग मैसेज को सुनकर झांसी में बहुत प्रकार की इस प्रकार से इंटरेस्ट जागृत हुआ। एक बात की बात है कि प्रभुपाद जा रहे थे डॉक्टर मुल्ले के साथ, ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, वहां पर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, उसका नाम है भारती भवन। भारती भवन जाते हैं, बहुत सारे उसके अंदर मकान होते हैं, उसके अंदर एक जो सेंटर मकान उसका नाम है राधा मेमोरियल। बड़ा प्रभुपाद सोचते हैं राधा मेमोरियल, और जब भी झांके देखते हैं तो एक दीवाल पे बेहद खुशी होती है उनको एक चीज पढ़कर, वो क्या था, उस दीवाल पर महामंत्र लिखा हुआ था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखकर प्रभुपाद को ऐसा स्फूर्ति हुई कि ये मकान अभी कोई उपयोग नहीं कर रहा है, ये खाली है, दुरुस्त नहीं है, कोई उसका कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो ये मकान किस लिए बनाया गया है? प्रभुपाद ने सोचा ये मेरे लिए बनाया गया है ताकि मैं प्रचार का कार्य करके यहां से मेरा आंदोलन वापस चालू करूं। उन्होंने एप्लीकेशन लिखा उधर के वहां से लैंड ओनर से मिले और कहा कि आप यूज कर सकते हो इस प्रकार से, ये वैसे ही खाली पड़ा है, आप यूज करिए उसका प्रचार करने के लिए। और फिर 1954 में प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा इवेंट वहां पे किया, जब भी सभी लोग जो हैं झांसी के नामांकित लोग हैं वो सब लोग पत्रकार वगैरह भी आए, और उन्होंने एक संस्था बनाई, उसका नाम था इस्कॉन। पहले की संस्था का नाम कौन सा था, किसको पता है? इस्कॉन के पहले लीग ऑफ डिवोटीज। ये कैसे ऐसा नाम आया, लीग ऑफ नेशंस जो था जो बनाया था जो असफल रहा, लेकिन प्रभुपाद के मन में हमको सोचना है, प्रभुपाद का जो दृष्टि है वो झांसी का नहीं है न भारत का है, उनका दृष्टि कहाँ कितना ब्रॉड है, वो पूरा पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का सोच रहे हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं श्रील प्रभुपाद क्या है, जगत गुरु, जो जगत के उद्धार के लिए एक कड़कड़ी जिसके हृदय में होती है उसको बोलते हैं जगत गुरु। प्रचार कार्य चालू हुआ, प्रभुपाद ने बहुत कुछ वहां पर एक्टिविटीज शुरुआत की, लेकिन जैसे होता था ना वैसे कि भगवान के हृदय में कुछ ऐसी अच्छाई रही होगी, प्रभुपाद जितने भी जगह पर जहां पर जाते वहां पर कुछ सक्सेस होता वापस फिर नेगेटिव आ जाता था, गिर जाता था। इस समय की बात है, प्रभुपाद ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये इस्कॉन के पास ये आज फिगर नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने एक ऐसे व्यक्ति है मैं जानता हूं जिसने हजारों पत्र लिखे हैं, उनकी पेन कभी थकती नहीं थी, और किसको पत्र लिखते थे, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णा, राइट, मिस्टर सिंघानिया, ऐसे जो संसार के जो बड़े बड़े लोग थे, अमेरिका में लिखा पत्र उन्होंने कितने लोगों को, यानी कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी तरह से कोई भी व्यक्ति होगा जो मदद करने के लिए उनको राजी हो जाएगा, ऐसे बहुत कुछ ट्राई किया कि कोई सपोर्ट मिल जाए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उस समय भारत पूरी तरह से वेस्टर्न दिशा में ऑलरेडी वो प्रभावित हो चुका था, इसलिए वेस्टर्न आइडियाज, पाश्चात्य देश के आइडियाज ज्यादा होने के कारण प्रभुपाद को किसी तरह से भी सफलता यहां पर नहीं मिली है। 1922 को जो आदेश मिला है, 1966 तक 44 साल के अंदर प्रभुपाद ने इतना प्रयास किया है लेकिन प्रभुपाद को सफलता नहीं मिली। अगर कोई व्यक्ति इतना प्रयास करता है तो क्या होगा? दुखी हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद के पास एक ऐसी चीज हमको सुननी है, समझनी है जीवन के अंदर कि चाहे कितना भी रिवर्सल क्यों ना हो, कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं द नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड। प्रभुपाद ने कभी भी अपने आप को मायूस होने नहीं दिया और प्रयास करते रहे। फिर जो झांसी का जो लैंड ओनर था उसने एक प्रभुपाद को लेटर भेज दिया कि अगर आपको ये मकान चाहिए आगे चलाने के लिए तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। जो पहले फ्री बोलने का उसने जो वादा किया था 5,000, आप सोच 5,000 का कितना कीमत होगा आज, कौन कह सकता है 5,000 का कितना कीमत है आज? कम से कम 5,00,000 से भी ज़्यादा है। प्रभुपाद वानप्रस्थ थे, कोई पैसा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। प्रभुपाद को नाराज होकर वहाँ से निकल जाना पड़ा, राइट? क्योंकि जो केएम मुंशी जो थे उनकी वाइफ ने कहा कि ये जगह हमको चाहिए हमारे महिला मंडल करने के लिए, एक लेडीज क्लब बनाने के लिए। प्रभुपाद को धीरे से वहां से निकल जाना पड़ा। हम देखते हैं प्रभुपाद को इस तरह से निष्फलता मिलती गई। अभी प्रभुपाद का नेक्स्ट चैप्टर आता है वृंदावन में। वृंदावन एक ऐसा स्थल है प्रभुपाद के जीवन में जो ठोस प्रिपरेशन प्रभुपाद ने किया, क्योंकि वहां पर से उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत की रचना चालू की है। भागवत का 1961 में प्रभुपाद का लिखित चलना चालू कर दिया। बंशी गोपाल जी मंदिर में रहे, फिर 3 साल के बाद राधा दामोदर मंदिर में रहे और वहाँ पर रूप गोस्वामी के, जैसे हम देख रहे हैं आप जीवी के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, ब्रजवासी हैं आप लोग, तो आप लोग हर रोज देखते हो कि कैसे प्रभुपाद अपनी खिड़की से हर रोज रूप गोस्वामी का दर्शन करते थे और बेहद प्रार्थना करके ग्रंथों का उन्होंने रचना का शुरुआत किया। तो धीरे धीरे से प्रभुपाद भ्रमण करते 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 फिर लास्ट में जिससे मिलते थे बोलते थे मुझे जाना है, क्योंकि प्रभुपाद समझ गए थे कि मैं चाहे कितना भी अपना जान दे दूंगा फिर भी भारत में मैं ये क्रांति भक्ति की नहीं ला सकता हूं। मन में ये उन्होंने निर्धार किया कि मुझे कहां जाना पड़ेगा, पाश्चात्य देश जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी नकल कर रहे हैं लोग, भारत के लोग आज भी हम देखते हैं कि लोग नकल करते हैं। प्रभुपाद ने समझ लिया कि वहां जाऊंगा और वहां के लोगों को जब भी मैं भक्त बनाऊंगा, जब भी वो लोग यहां पर आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, भारत के लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, नकल करेंगे। और अच्छी चीज का नकल अच्छा होता है, बुरी चीज का नकल बुरा होता है। तो जब भी नकल करेंगे तो नकल करें तो फिर वो लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जिससे भी मिलते थे, फिर एक मथुरा के मिस्टर अग्रवाल से मिले और ऐसे ही बोल दिया, जनरल ऐसे ही बोल दिया कि हम जाना चाहते हैं, आपका बेटा वहां पर है ना, तो अगर हो सकता कुछ कुछ उससे स्पॉन्सर से बेटर ले लीजिए। इस तरह से प्रभुपाद को ऐसे उन्होंने खाली बोल दिया था, जानते थे कि ऐसा शायद होने वाला नहीं, कितने लोगों को बोल के रखा था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। और लास्ट की एक घटना आती है जो इस्कॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनका मुलाकात किससे हुआ, सुमति मुरार जी से। सुमति मुरार जी एक पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य संप्रदाय की एक प्रामाणिक कृष्ण भक्तिन थी और उनके मिलने के बाद जो चीज हुआ है वो आगे हम देखेंगे। आइए ये फिल्म देखकर अपने आप को हम आनंद से देखते हैं कि प्रभुपाद ने क्या किया सुमति मुरार जी को मिलने के बाद।
कृष्ण
चिंता मत करो वत्स, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। तुम अमेरिका जाओ और देखो कैसे सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तुम्हें वो करने के लिए निश्चित किया है जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। अब केवल विश्राम करो।
कृष्ण
हरे कृष्णा। जलदूत में जाने के बाद प्रभुपाद जी बॉस्टन पहुंचते हैं। यह यात्रा शुरुआत हुई किंग एडवर्ड मेमोरियल जो डॉकयार्ड है कोलकाता से। 13 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अगस्त 1965। 34 दिन की यात्रा रही। 17 तारीख को प्रभुपाद बॉस्टन पहुंचे। जब बॉस्टन की शुरुआत के पास पहुंचते हैं, जलदूत पहुंचता है, तो वहाँ पर दूर से बॉस्टन का जो नज़ारा है उनको दिखाई देता है। और वहाँ पर प्रभुपाद के हृदय में जो एक प्रकार का भावना की बाढ़ आती है, उनका हृदय अनुकंपा से बिल्कुल भर जाता है, नेत्रों से आंसू आ जाते हैं कि मैं किस प्रकार के शहर में आया हूँ, किस प्रकार की दुनिया में आया हूँ, मैं कैसे ऐसे इतने पतित लोगों को मैं कैसे उद्धार करूँगा। इस भावना से प्रभुपाद के हृदय से एक कविता बाहर निकलती है जो उन्होंने लिखा। आज हम सब बहुत भाग्यवान है कि हम बैठकर वही कविता गाना चाहेंगे, बड़े भक्ति से, भावना से, जो प्रभुपाद ने उस समय लिखा जब वो अमेरिका में प्रवेश करने के पहले उनकी भावना, उनके फीलिंग्स क्या थे, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा सर्वदा मंत्र प्रभु। हरे कृष्णा
बर कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति की लागिया नीले था कर ए बेगति बर कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति लागिया मिले ता करो ए बेगति बर कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति की लागिया नीले था करो ए बेगति बर कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति मिला गिया मिले आज किछु कर जाताबा ए अनुमाने नाही के नानी बेन ए उग्रस्ताने आज किछु कर जाताबा मगोनेरा सबाइया सन्न वसुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न रजस्तम गुनेरा सबाइया छन्न वासुदेव कथा रुचि नहि से प्रसन्न तबे जदि तब कृपा अय होइ तो की सकलै संभव है तुमि से कौतु तबे यदि तव कृपा होय है तूती सकलै संभव होए तुमि से कौतुकी की बाबे बुझाले तारा बुझे जाले तारा बुझे से राजा ये तो कृपा कर प्रभु करी निज बसा ये तो कृपा कर प्रभु करी निज बसा तुमार इच्छाय सब हय माया बस तुमार इच्छाय नाश मायार प्ररस तुमार इच्छाय सब होय माया वश तुमार इच्छाय नाश मायार परश तब इच्छा होय जदि तादेर उद्धार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुमार तब इच्छा होए जदि तांडेर उधार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुमार भागवत कथा से तब बतार तेर कथा से तव अवतार भागवत कथा से तव अवतार भागवत कथा से तव अवतार धीर होया सुने जदि कने बार बार धीर होया सुने जदि कने बार बार रजस्तम हते तवे पाइबे निष्ठा हृदय अभद्र सबे बुझिबे ताहार रजस्तम हते हबे पाइबे निस्तार हृदय अभद्र सबे बुझिबे ताहार करे बुझाब कथा बरसे सही सूत्र आमी दीनहीन कोन शक्ति नाही की करे बुझाब कथा बरसे जाही शूद्र आमी देना ही ना कोनो शक्ति नाही अथच एने च प्रभु कथा बोली बारे जो तुमार इच्छा प्रभु करो एबारे अथच एने च प्रभु कथा बोली बारे जे तुमार इच्छा प्रभु करो एबारे अखिल जगत गुरु वचन से तुमार अखिल जगत गुरु वचन से आर अखिल जगत गुरु वचन से अमार अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबार क्षमता तुमार अलंकृत करिबार क्षमता तुमार तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध होबे सुनिया सबार सुख दुख जे घुचीबे तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध होबे सुनिया सबार शोक दुख जे घुचीबे अनियाच चदी प्रभु अमरे नचाते अनियाच चदी प्रभु अमरे नचाते नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते कष्टेर पुतली जता नचाओ से मते काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से मते भक्ति नाई वेदनाई नाम खूब बरा भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक कर भक्ति नाई वेदनाई नामे खूब धरो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो वर कृपा कोइले कृष्ण मध मेर प्रति लागिया नीले था करे बेगति बोर कृपा कोइले कृष्ण अध मेर प्रति लागिया नीले था करे बेगति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद
जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद
जय श्रील प्रभुपाद की जय
हरे कृष्णा। तो इस भजन से पहले किस तरह से द्वारकाधीश प्रभु जी ने हमें बताया कि भविष्य पुराण में वर्णित एक महान सेनानी शिल प्रभुपाद जी और उनका हृदय अमेरिका में पहुंचने से पहले जिस भजन के माध्यम से प्रकट हुआ वो भजन हमने यहाँ गाया, और उसके बाद उन्होंने अखिल विश्व के कल्याण के लिए जो संस्था स्थापन किया और सिर्फ 12 साल में विश्व में जो क्रांति फैलाई उसके बारे में हम कथा के रूप में यहाँ सुनेंगे श्रीमान माधव गोपाल प्रभु जी से। तो मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मूलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, उनकी जो बहुत ही वरिष्ठ शिष्या है यमुना माता जी, उनको बता रहे थे कि अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाई है और आपको कृष्ण से आपको विशेष आपको शक्ति चाहिए तो ये दो प्रार्थना आप गाइए, ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य और श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो श्रील प्रभुपाद जी, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा था कि सुमति मुरार जी उनको मना कर रही थी श्रील प्रभुपाद जी को, प्रथमतः उनको बता रही थी कि स्वामी जी आपने कभी अमेरिका का जो वातावरण है उसका कुछ अनुभव नहीं है आपको। तो सुमति मुरार जी के खुद के शब्द में, अमेरिका इज़ वेरी कोल्ड एंड यू आर वेरी ओल्ड। तो बताते अमेरिका इतना ठंडा है वहाँ पर और आपको उसका कुछ अभ्यास नहीं है ऐसे वातावरण में रहने का, तो यू मे डाई देयर, आपकी उधर मृत्यु हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी फिर भी नहीं माने और उन्होंने जैसे उसको कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लैकमेलिंग, क्या तुम मेरे बेटी के समान हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं बेटी का क्या कर्तव्य है? तो पिता की इच्छा पूर्ण करना, तो आप मुझे टिकट दे दो। तो इस प्रकार से जैसे हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं वैसे स्पिरिचुअल ब्लैकमेलिंग जैसा। तो सुमति महाराज जी ने हृदय पर पत्थर रखकर उनको वो टिकट दे दिया, क्योंकि पता नहीं था प्रभुपाद वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वहाँ से। ये तो ऐसा है कि शेर के मुंह में, शेर जहाँ पे है पिंजरे में उसमें कोई चला जाना, क्योंकि इतना कठिन समय है, प्रभुपाद के पास कुछ पैसे भी नहीं है वहाँ जाने के लिए, और वहाँ क्या कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, एक ही कॉन्टैक्ट है बस गोपाल अग्रवाल, और ऐसे नहीं कि तब कुछ फ़ोन पर बात की जाए कैसे, सब पत्र व्यवहार से होता है, कौन कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमने वो प्रार्थना पढ़ी जलदूत में। प्रभुपाद जी जब बॉस्टन में आते हैं और एक 15 सितंबर और एक दूसरे 17 सितंबर को ऐसा दो प्रार्थनाएं वो लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि रजस्तमो भावे एबे, पूरा रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित है ये जगत और खास करके पाश्चात्य देश, तो वो मैं जो बताने वाला हूँ कृष्ण कथा वो कैसे समझेंगे? एक ही प्रकार से संभव है अगर आप उनको, आप मेरे वाणी पे के ऊपर प्रकट होंगे तब जाके उनके हृदय में आपकी वाणी उनको समझ में आएगी।
और वैसे भी देखा जाए आप तो बहुत सारे शुरू के जो भक्त थे, प्रभुपाद जी की अंग्रेजी जो है वो इतनी उसके ऊपर बंगाल का इतना प्रभाव था कि वो समझते नहीं थे कि प्रभुपाद क्या लिखते हैं, क्या बता रहे हैं। तो केवल प्रभुपाद जी के हृदय का जो कृपा है या करुणा है, या प्रभु जी कल कह रहे थे, तो वही असल में वो कुछ भाषा का कुछ उसमें व्यत्यय नहीं आया, केवल उनके हृदय का जो भाव है, जो कृष्ण भक्ति देने की जो उनकी स्फूर्ति है और उनकी कृपा है, वही लोगों को समझ में आई। और दूसरा, प्रभुपाद जी इतने कृपालु थे कि एक उसका एक किस्सा यमुना माता जी बताती हैं। प्रभुपाद जी ने 66 में कौन सा पुस्तक चुना जिसके ऊपर से वो प्रवचन करते थे, तो चैतन्य चरितामृत के ऊपर उनके बहुत सारे प्रवचन होते थे कि प्रभुपाद ने सोचा कि, और वो भी सनातन शिक्षा, तो 15 दिन के लिए प्रभुपाद जी सनातन शिक्षा के ऊपर बोल रहे हैं रोज शाम को, और ऑडियंस जो है श्रोतागण थे वो वही श्रोतागण जो थे जो पहले दिन आए थे वही श्रोतागण आते थे। 15 दिन के लिए प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कौन है, सनातन गोस्वामी कौन है, कृष्ण कौन है, इसके ऊपर सब बता रहे हैं। 15 दिन के बाद एक लड़की हाथ उठाती है और प्रभुपाद जी कहते हैं यस, क्या प्रश्न है? तो वो लड़की पूछती है, वो 15 दिन से थी वो क्लास में, हाँ, और वो लड़की पूछती है बट हु इज लॉर्ड चैतन्य, ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? 15 दिन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लेक्चर सुनने के बाद एक श्रोता पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु है कौन? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अगर आप रहेंगे उस जगह पे तो आप क्या कहेंगे? अरे मूर्ख, 15 दिन से क्या सो रही थी क्या? मैं क्या बता रहा था? अब तक क्यों नहीं समझ में आ रहा तुमको? 15 दिन से वही चीज तो बता रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यमुना माता जी एक अपने मेमोरीज में कहती हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम कितनी बुद्धिमान हो कि तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। तो शुरू से प्रभुपाद पूरा बताते हैं कि कैसे कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। तो ये सब कुछ प्रभुपाद की जो करुणा है वही उनको खींच के लाई है भक्ति में, उसके बिना ये संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी के जैसे ही उन्होंने भक्तों को स्वीकार करना, शिष्यों को स्वीकार करना चालू किया, तो प्रभुपाद जी प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम के अंत में, वो पाश्चात्य देश है उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु कौन है उतना भी मालूम नहीं है उनको। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रोग्राम होने के बाद स्वयं जो कुछ प्रसाद था वो वितरण करते थे, बाद में जो वो प्लेट वगैरह थी तो वो स्वयं धोते थे। तो 4 महीने के बाद एक शिष्य आकर पूछता है, प्रभुपाद कैन आई हेल्प यू इन समथिंग, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद कहते हैं कि पिछले 4 महीने से मैं यही सोच रहा था कि कोई तो आके मुझे पूछे। तो इस प्रकार से बहुत सारे कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, रहने के लिए जगह नहीं थी। एक योगा सोसाइटी के जो राममूर्ति मिश्रा थे उन्होंने रहने के लिए जगह दी थी, लेकिन जब भी प्रभुपाद कुछ भक्ति के बारे में उनको शिष्यों को बताना चाहते थे तो राममूर्ति मिश्रा को उनको लगा थोड़ा सा उनके ऊपर उनके मन में भय पैदा हो गया कि मेरे स्टूडेंट्स को ना लेके जाएं। तो इसलिए वो प्रभुपाद जी को कीर्तन करने के लिए देते थे लेकिन बोलने के लिए नहीं देते थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने सोचा कि ठीक है, शायद से मुझे अपना स्वयं का कुछ एक जगह देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनको माइकल मिल जाते हैं और वो उनके लिए जो स्टोर फ्रंट है, मानो कि एक दुकान है, और वो दुकान में ही वो राधा कृष्ण मंदिर बना देते हैं और वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन वो गीता के ऊपर प्रवचन करना चालू करते हैं। और जो बहुत सारे हिप्पी लोग थे उस समय के, तो वो लोग असल में आध्यात्मिक जीवन ही चाहते थे,
लेकिन वो मिसगाइडेड यानी कि पथभ्रष्ट थे, इसलिए वो सही जगह पे नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन सबके मन में यही था कि कुछ आध्यात्मिक मिल जाए। तो इस प्रकार से शुरू शुरू में उनको लगता था कि भारत से जो भी आ रहा है या ईस्ट से जो भी आ रहा है वो सब आध्यात्मिक है। तो एक उनमें से एक लड़की प्रभुपाद जी को पूछती है, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते कि प्रभुपाद जी के सामने ऑडियंस कौन है। तो एक लड़की हाथ ऊपर उठाती है और क्योंकि उसने सारा योग ज्ञान सब कुछ सुना है और उसको लगता है सब समान है, और ये भी कोई ऐसी कुछ स्वामी है जो अभी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो वो लड़की पूछती है प्रभुपाद जी से, लेकिन स्वामी जी भगवान को जाने के लिए तो बहुत सारे मार्ग हैं कि नहीं, जैसे द्वारकाधीश प्रभु भी बता रहे थे यतो मत ततो पथ, वो उसका भी प्रचार उधर हुआ था बहुत पाश्चात्य जगत में। तो वो लड़की पूछती है लेकिन भगवान के जाने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए तो बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। तो तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, भगवान के जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है भक्ति। जैसे खाने का एक ही मार्ग है, ये मार्ग नहीं है, ये भी मार्ग नहीं है, केवल ये मार्ग है। तो वैसे भगवान की तरफ जाने का भी एक ही मार्ग है, वो है भक्ति। भक्त्या हम एकया ग्राह्या भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फिलॉसफी में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन लोगों को बहुत अकोमोडेट किया। चाहे किसी भी प्रकार के व्यसन से आया हुआ व्यक्ति हो, जैसे एक शिष्य प्रभुपाद जी के सामने वाउज ले रहा था, नियम के बारे में बोल रहा था कि मैं मांसाहार नहीं करूँगा, मैं अवैध संबंध नहीं रखूँगा, मैं नशापान नहीं करूँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा। उसके बाद प्रभुपाद उसको पूछते हैं इसमें से तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन सा है, ताकि प्रभुपाद को मालूम था कि सब अलग अलग पार्श्वभूमि से आए हैं, उनको कठिन भी जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही उदारवादी थे। एक रिपोर्टर ने छपवाया पेपर में, सैन फ्रांसिस्को में दो खास करके न्यूज़पेपर थे, क्रॉनिकल्स करके एक था और एग्जामिनर करके दो पीरियोडिकल्स आते थे, आई थिंक न्यूज़पेपर्स थे वो, तो वर्तमान पत्र थे। तो उसमें से एक अखबार ने छपवाया कि अ कॉन्जर्वेटिव स्वामी हैज कम फ्रॉम इंडिया करके। तो प्रभुपाद ने मुकुंद गोस्वामी को पूछा मेरे को कॉन्जर्वेटिव यानी कि रूढ़ीवादी, जो रूढ़ी से बहुत ही सख्त है, नियम का बहुत ही आग्रह करते हैं, वो रूढ़ीवादी होते हैं, तो वो कॉन्जर्वेटिव स्वामी हैज कम, ऐसा करके अखबार ने छपवाया। प्रभुपाद ने बोले कॉन्जर्वेटिव क्यों लिखा है मेरे बारे में। तो वो मुकुंद प्रभु, उस समय मुकुंद प्रभु, तो उन्होंने कहा क्योंकि आप ये नशापान अवैध संबंध इसको आप मना करते हैं इसलिए कॉन्जर्वेटिव कहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये तो साधारण है, उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, उल्टा चैतन्य महाप्रभु तो कोई प्रकृति नाम सुन के भी अपना कान बंद कर लेते, और यहाँ पर मैं तो आबाल पुरुष स्त्री कोई लिंग कोई देश कोई जात कोई भी यहाँ पे आकर हरे कृष्ण जप सकता है। तो मैं असल में कॉन्जर्वेटिव यानी रूढ़ीवादी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही उदार मतवादी हूँ यानी कि लिबरल हूँ, ऐसा करके प्रभुपाद ने कहा। तो उसके पश्चात धीरे धीरे बहुत भक्त जुड़ने लगे और प्रभुपाद ने सबका हृदय जीत लिया अपनी कृपा से। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जानकी माता जी एक बार प्रभुपाद को प्रश्न पूछी, प्रभुपाद आपको कुछ बच्चे हैं? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, क्या तुम मेरी बच्चे नहीं हो? तो जानकी माता जी कहते हाँ मैं हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा और ये बाजू में जो तुम्हारे सारे अलग जो लोग हैं अलग जो बैठे हुए हैं क्या वो मेरे बच्चे नहीं है? तो जिस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा, जानकी माता जी ने सोचा कि सच में प्रभुपाद हमको बेटा है और बेटी के समान देख रहे हैं। तो एक पिता जैसे अपने बालकों को या बालिकाओं की तरफ देखता है वैसे ही उन्होंने उनकी तरफ देखा। और फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मेरा मुझे एक सपना आया, सपने में प्रभुपाद आप सब दुनिया भर के सारे लोग, हमारा एक अलग से प्लैनेट है, अलग से ग्रह है, और वो अलग ग्रह पर हम सब बैठे हुए हैं, और सारी जो जनता है उसके केंद्र में आप बैठे हुए हैं, और आप हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं और उसके पीछे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, सारी सारी वो जो पृथ्वी है वो पूरी कीर्तन कर रही है। तो प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छा सपना है, ऐसे सपने देखते रहो। तो इस प्रकार ये पहले न्यूयॉर्क से, फिर सैन फ्रांसिस्को में, और फिर वहाँ से जो श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, ये दो नए शिष्य जुड़ गए, और वहाँ से और बहुत सारे शिष्य थे उनके जो पुस्तक वितरण का कार्य कर रहे थे। एक यहाँ पे एक किस्सा मुझे स्मरण हो रहा है, ब्रह्मानंद प्रभु वो जब शुरू में आए थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी से सुना कि वो कुछ तो जॉब करते थे, कुछ तो पेशा था उनका, प्रभुपाद जी से सुना कि कृष्ण कह रहे हैं गीता में, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, यानी तुम जो करते हो, जो कुछ कमाते हो, सब मुझे अर्पण करो। तो ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद जी यहाँ पे आप ऐसा कर रहे हैं कि जो कमा रहे हैं वो सब कृष्ण को अर्पण करो, मैं तो कमा रहा हूँ लेकिन मैं कैसे कृष्ण को अर्पण करूँ? तो प्रभुपाद ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अर्पण करो, मैं कृष्ण को अर्पण करूँगा। तो असल में ये तो तत्व की बात है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। हम गुरु को संतुष्ट करते हैं तभी जाके तो हम उसी के माध्यम, हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। वाया मीडियम किस दो के बीच में है? हमारे और कृष्ण के बीच में ये गुरु एक वाया मीडियम का काम करते हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने पहला उनको एक सेवा दिया कि जो ये गीता प्रभुपाद जी ने लिखा था टिप्पणी, जो टीका, उसको पब्लिश कराना था। उससे पहले कहीं पब्लिशिंग हाउस ने उनको रिजेक्ट किया था, तो प्रभुपाद जी ने कहा, अभी आप मैकमिलन कंपनी में चले जाओ। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहे, लेकिन मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, तुम बस जाओ और बताओ। तो प्रभुपाद जी, जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज करते कहते हैं कि आज्ञा के साथ बल भी आ जाता है, आज्ञा के साथ कोई गुरु आज्ञा देते हैं तो आज्ञा के साथ वो बल भी देते हैं। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे ये मैं इसके लिए बल कहाँ से आएगा, क्योंकि गुरु कौन है, नित्यानंद बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं, तो आज्ञा के साथ बल भी आ जाता है। तो ब्रह्मानंद प्रभु सोचे कि ठीक है, मैं प्रभुपाद जी बोल रहे तो मैं जाता हूँ। तो जब वो गए, खास करके वो जगह पे जो मुख्य उनके जो मुख्य जो मालिक है उस जगह के, वो ज़्यादा करके आते नहीं थे, लेकिन उस दिन वो किसी काम की वजह से आए थे। और ब्रह्मानंद प्रभु ने जाकर सीधा उनको ही पूछा, बताया कि मुझे, मेरे पास पुस्तक है और उसे छपवाना है। तो उन्होंने कहा, कौन सा पुस्तक है? तो बोले, भगवद गीता। तो उसने बिना किसी जांच परख के कहा, हम उसको पब्लिश कर देंगे। तो इतना सिंपल कभी आपने देखा है? किसी, आप जाते हो अंदर किसी पब्लिशिंग हाउस में और उसके मालिक को आप बताते हो कि मेरे पास पुस्तक है, हजार प्रकार की इंक्वायरी होती है, कौन सा पुस्तक है, कैसा है, प्रूफ के लिए पहला कॉपी भेजो हमारे पास, फिर हमारी कमेटी बैठेगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या कैसा होता है। उतना सब होने के बाद फिर डिसीजन पे आता है, निर्णय होता है कि पब्लिश करना है कि नहीं। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोला गीता के ऊपर पुस्तक है, उसने बोला हम पब्लिश कर देंगे, और कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि गीता के ऊपर हमको मिल नहीं रहा है, हमारा अभी नया सीरीज, हमने रिलीजियस सीरीज चालू किया है जिसमें हम हमारे पास कुरान के ऊपर है, बाइबल के ऊपर है, लेकिन गीता के ऊपर ही नहीं था, हम ढूंढ ही रहे थे, तब तक आपने कहा कि है करके आपके पास। तो उन्होंने वो गीता पब्लिश किया। तो इस प्रकार से जो इस्कॉन जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया। जो ब्रह्मानंद प्रभु तो ये भी कहते हैं कि जो उनके शुरू के जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह सारे पुस्तक हैं, वो किसने टाइप किए, ट्रांसक्राइब करना पड़ता है ना, किसने किए? तो एक दिन अचानक ब्रह्मानंद प्रभु को टास्क दे दिया उन्होंने। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने सोच रहे थे कैसे करूं ये पुस्तकों को, ये टाइप इतना कौन करेगा? तो अचानक बेल बजी, डोर बेल। तो उन्होंने खोला तो एक नव युवक था। तो उन्होंने कहा, क्या चाहिए आपको? तो कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज में एक इलेक्टिव है जिसमें मुझे एक कुछ ऐसा सोशल वर्क करना है, एक कुछ और वो करके दिखाना है, तो मेरे पास एक महीने के लिए समय है, मैं एक महीने के लिए आपकी फ्री में कुछ बिना पैसे लिए आपके लिए कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो उनको पूछा आप क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा मैं टाइपिस्ट हूँ। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले आ जाओ अंदर आ जाओ। और फिर जो बहुत सारे जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये सारे जो बुक्स हैं छोटे छोटे बुक्स जो शुरू के, वो सारे ये बंदे ने सब टाइप करके दिया महीने भर के लिए। और फिर बाद में कहाँ गायब हो गया किसी को भी मालूम नहीं। अपना सेवा करके वो चला गया। तो इस तरीके से हम देखते कि कृष्ण स्वयं, जो हमने वीडियो में देखा कि प्रभुपाद जी को दिलासा दे रहे थे कि आप चिंता मत करो, आप बस वहां जाओ, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने सारा जो कष्ट जो उठाया उसके लिए बल जो है, सारा जो प्रबंध है, जो सब कुछ वो सुविधा जो है सब कृष्ण भेज रहे थे। तो उसके पश्चात जो तीन जो कुटुंब थे, दंपति थे, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु और जानकी माता जी और मुकुंद प्रभु, तो तीनों को वो यूरोप भेज रहे थे ये 1968 में। और वो थोड़े से सोच रहे थे कि कैसे होगा ये, हम तो अभी इस प्रकार से कपड़े पहन रहे हैं, बाहर के लोग सोच रहे हैं पाश्चात्य देश के कि ये कुछ चद्दर पहन रहे करके, और हम तिलक लगा रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्या लगा रहे हैं सर पे। तो इस प्रकार से अजीब सी वेशभूषा है हमारी, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोच रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको एक किस्सा बताते हैं, बोलते हैं आप अपने स्टाइल के ऊपर डटे रहिए और कॉन्फिडेंटली बताइए, आप अपना प्रचार कीजिए, लोग समझें कि ये लेटेस्ट स्टाइल है करके। तो प्रभुपाद जी उनको उदाहरण देते हैं कि एक मूवी है कि जिसमें चार्ली चैपलिन एक कक्ष में नृत्य कर रहा है, नृत्य करते करते उसका कुर्ता जो है पीछे से फट जाता है। तो ड्रेसिंग रूम में जाता है और देखता है कि अरे इस कुर्ते का कुछ कर नहीं सकते, तो उसको और फाड़ देता है और पूरा लंबा दो ऐसे पीछे से कुर्ते का जो कोट है उसके दो ऐसे छिद्र दिखाई देते हैं। तो वो बाहर आके ऐसे कॉन्फिडेंटली नाचता है, तो बाकी लोग देखकर हंस रहे हैं उसको। तो चार्ली चैपलिन को पूछते हैं अरे तुम्हारा कुर्ता फटा हुआ है, तो चार्ली चैपलिन कहता है कि नहीं नहीं यही लेटेस्ट स्टाइल है करके। तो सब अंत में क्या होता है, हर एक जन अपना कुर्ता पीछे से फाड़ना चालू करता है और अंत में सब लोग सोचते हैं कि अरे यही लेटेस्ट स्टाइल है करके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप वैसे ही कॉन्फिडेंटली जाओ, आप धोती कुर्ता साड़ी जो वही पहनो, लोगों को लगेगा कि, और कॉन्फिडेंटली अगर प्रचार करोगे तो लोगों को लगेगा कि यही लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट फैशन यही है करके। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी एकदम, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उनको प्रेरित करते हैं कि वो यूरोप जाके प्रचार करें। बाद में वो मुंबई में भी आके प्रचार किया, वृंदावन मायापुर में भी अनेक मंदिर स्थापन किए, और उन्हीं की बदौलत उन्होंने 1971 में पंडाल प्रोग्राम भी अरेंज किया था जिसमें परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहीं पे पहली बार ज्वाइन हुए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का प्रचार कैसे पूरे जग में किया। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
हरी बोल हरे कृष्णा। हम देख रहे हैं कि इनके पास खजाना है और खजाने से वो कुछ बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन खजाने को हमको दरवाजा बंद करना पड़ा उनका, राइट, कि किसी और प्रसंग में दोबारा से हम यहाँ पर मिलेंगे, यही कक्ष में मिलेंगे और वापस से ये खजाने खोलने के लिए निवेदन करेंगे और खूब इसका क्या करेंगे, हम लोग आस्वादन करेंगे श्रील प्रभुपाद की। तो हमारी यात्रा शुरू हुई 1922, 1933, 1944, 1955, 1966 और हमको कहाँ पहुँचना है अभी 1977। तो जो भी सूरज आसमान में आता है, उगमता है, उदय होता है, उस सूरज का एक दिन अस्त भी होता है। तो इसलिए प्रभुपाद के जीवन का ये अस्त, व्हाट हैपेंड,
हरे कृष्ण।
तो 77 एक ऐसा हमारे लिए एक इमोशनल तिथि है जब श्रील प्रभुपाद का अंतिम जो कहते हैं हम लोग अंत्य लीला श्री वृंदावन धाम में जो आप लोग गए हैं देखा होगा एक कक्ष है विशेष कक्ष जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपना देह त्याग किया। देह त्याग किया ये बड़ी बात नहीं है लेकिन किस चेतना में देह त्याग होता है वो बड़ी बात होती है। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अंतिम क्षण तक कुछ घंटों पहले से ही कि पहले जो है हम देख रहे हैं प्रभुपाद का शरीर देखिए जैसे कि हो जाता है कि शरीर में कोई शक्ति नहीं रही उनकी किडनी फेल हो गई हार्ट पहले दुर्बल था ही जो हार्ट अटैक आ चुका था और इतना भ्रमण किया कौन कह सकता है कि इतनी उम्र में 14 बार कोई जवान व्यक्ति भी 14 बार भ्रमण नहीं कर सकता पूरी पृथ्वी का उतना उन्होंने भ्रमण किया 70 ईयर्स के बाद में भ्रमण किया है। प्रभुपाद कितने घंटा घंटा सोते थे सिर्फ प्रभुपाद सिर्फ हम कितने घंटे सोते हैं 7-8 कभी 9 घंटा भी सो लेते हैं ना लेकिन प्रभुपाद सिर्फ 4 घंटा सोते थे। तो इतना शरीर जो है क्षीण हो गया दुर्बल हो गया और फिर अंत में प्रभुपाद का शरीर जो है कार्यशील नहीं रहा। प्रभुपाद ने अपने शिक्षकों को कहा कि मुझे सिर्फ 2 चीज़ें भी दीजिए मैं खाना नहीं खा सकता हूँ पचा नहीं सकता हूँ हिल नहीं सकता हूँ बोल नहीं सकता हूँ लेकिन मुझे आप 2 चीज़ से मेरा मेंटेन करिए शरीर वो है कृष्ण कथा कीर्तन और पीने के लिए सिर्फ शरणामृत राइट। तो हर आपके जीवन मेरे जीवन में ऐसा समय जब जरूर आएगा जब भी हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा प्रभुपाद बताया हमको कि इस तरह से अपने को देह त्याग करना है सिर्फ कीर्तन से। कीर्तन क्या है महा औषधि है और आहार के लिए क्या है शरणामृत है। इस प्रकार से लास्ट तक दशम स्कंद के 14वें अध्याय ब्रह्ममोहन लीला तक प्रभुपाद ने अपने भक्तिवेदांत तात्पर्य को प्रस्तुत किया और पूर्णतः शुद्ध चेतना जो शरीर पर आधारित नहीं थी लेकिन पूरी तरह से प्रकाशित चेतना में उन्होंने अपना शरीर धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आत्मा को शुद्ध रखते हुए गोलोक निवास में नित्य परिवष्ट किया। ये 14 नवंबर आज 28 नवंबर है राइट 14 दिन पहले 14 नवंबर शाम के 7:25 पर वृंदावन धाम में पवित्र धाम में प्रभुपाद अपना शरीर को त्याग करके गोलोक धाम जहाँ से प्रभुपाद आए हैं। प्रभुपाद हमारे जैसे जीव नहीं है जो कर्म बंधन से जन्म लेते हैं और कर्म बंधन से मरते हैं राइट। तो ऐसा कहते हैं कि शुद्ध भक्त कभी मरते नहीं है ये शब्द उसको यूज नहीं करते हैं। जैसे सूरज उदय होता है अपीयरेंस एंड देन डिसअपीयरेंस लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद चले गए संसार से। जब भी आज प्रभुपाद को हम देखते हैं जब भी हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या आपको हृदय में प्रभुपाद का उपस्थित समझ में आता है कि नहीं आता है। आता है ना प्रभुपाद को किसी लोगों ने देखा यहाँ पर किसी लोगों ने नहीं देखा है लेकिन प्रभुपाद का संबंध सबके साथ है कि नहीं है। है राइट। हमारा प्रभुपाद के साथ नित्य संबंध है और अनादि काल तक कितने ही पीढ़ियां आएगी 10,000 वर्ष तक जो है इनका सबका संबंध प्रभुपाद के साथ रहेगा। और जब तक हम प्रभुपाद के नियमानुसार जीवन जिंदगी जिएंगे उतना ही हमारा संबंध गाढ़ा बनेगा क्योंकि हमारे प्राथमिक शिक्षा गुरु के रूप में प्रभुपाद इस संसार में आए हैं राइट। तो ये प्रभुपाद का डिपार्चर का समय है। अभी हम छलांग मारते हैं 77 से कहाँ तक छलांग मारते हैं एक लंबी छलांग मारते हैं हनुमान की तरह और हम आते हैं आज के तारीख 2020 मनाते हैं। ये देखिए ये एक बहुत सुंदर स्लाइड है आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन आज इस्कॉन कहाँ पहुँच गया है प्रभुपाद के अथक प्रयास से आज इस्कॉन की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। आज हमारे पास 667 टेम्पल संसार में बन चुके हैं। हरि बोल। प्रभुपाद ने 108 बनाए आज हमारे पास कितने हैं 667 मंदिर आज संसार भर में इस्कॉन पूरा छा चुका है पृथ्वी भर में। हमारे पास आज दीक्षित कितने हैं 95,000 डिवोटी संसार में हैं जिन्होंने इस्कॉन के गुरु वृंद से प्रामाणिक हरिनाम दीक्षा प्राप्त की है। हरि बोल। कितने पुस्तक गए हैं billion books have been spread all throughout the world. Hari Bol. Yaad rahe, 3 din ke baad marathon chalu hone wala hai. December mein. To hum prayas karenge. Prabhupada ne jo itna din raat mehnat karke neend gawa ke jo humne unhone granth likhe hain, uska hum gaon gaon mein iska prachar karenge. To ek mahine ke liye jo apne paas samay aata hai marathon ka, usme hum khub prachar karenge taki har ghar mein Prabhupada ki pustak pahunch jaye. 9 million log prati varsh iskon mandir mein darshan ke liye aate hain. Right? Is prakar se bahut sara kuch statistics yahan par diya gaya hai jo vistar se 110 jaise apna Govindas hai apna yahan par Sinanchi restaurant, वैसे 110 रेस्टोरेंट्स हैं. इस प्रकार से इस्कॉन बहुत तेजी से प्रभुपाद के शक्ति के द्वारा कि बहुत तेजी से ये जैसे अग्नि फैलती है वैसे ये फैल रहा है. और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महान आंदोलन के साथ क्या हैं, हम जुड़े हुए हैं. राइट, वॉल्यूम.
Hare Krishna, Hare
पृथ्वी आते आज से नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो महाराणाम. ये किसने सिद्ध किया इस भविष्यवाणी को? श्रील प्रभुपाद की. अंत में हम प्रभुपाद की आराधना करेंगे, श्रील प्रभुपाद की वंदना गाएंगे, स्तुति गाएंगे, श्री गुरु चरण पद्मा. आप लोग सब पहले डांस होगा, उसके बाद पुष्पांजलि होगी, गुरु पूजा होगा, उसके बाद भरपूर पेट भर के हम प्रसाद खाएंगे. हरे कृष्णा. तो प्लीज
world torn apart by warring nations and divided by geographical, ethnic, and religious barriers. It was Srila Prabhupada who rallied the entire world under one banner by creating a spiritual united nation.
हरे कृष्णा। सब भक्तों ने, खास करके बालकों ने गोवर्धन इक्विलेज से इतना सुंदर नृत्य किया है, उन्होंने तीन बार हरि बोल उनको धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तभी जो
पूरा ये जो श्रील प्रभुपाद फेस्टिवल हमने मनाया अभी, मैं खास करके श्रीमान द्वारका देश प्रभु विशाखा माता को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे हमने ये प्रोग्राम एक गृहस्थ सेमिनार था, लेकिन उनके सोच से ये फेस्टिवल बन गया, और इसके लिए मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास करके आज का जो प्रसाद है हमारे प्रभुपाद के ग्रैंड ग्रैंड सन माधव प्रभु ने स्पॉन्सर किया है, प्रेमला माता आदिकेश्वर प्रभु के सुपुत्र, और आप सब लोग इतना समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत दूर दूर से भक्त लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, तो और खास कर जो जिन्होंने अलग अलग जो छोटे छोटे ड्रामास बनाए हैं, नाटिकाएँ बनाए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है हम एक दिन में नहीं कर सकते, एक दो तीन घंटे का नहीं है, इसको सुबह से शाम तक होना चाहिए, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अभी हम लोग पुष्पांजलि करेंगे, और पुष्पांजलि के बाद तुरंत आरती और सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। हम लोग सब अपने अपने जगह पे खड़े होंगे। हरे कृष्णा। सबके पास फूल दिए जाएंगे। पूरा मंगलाचरण होने के बाद हम लोग आपके पास प्लेट्स लेके आएंगे, भक्त लोग उनके पास ही आपको फूल देने हैं। और पूरा मंगलाचरण होने के बाद एक बार फिर वापस प्रभुपाद पंडित जी बोलेंगे, और पुष्पांजलि बोलने के बाद फिर हमको फूल तीन भाग में फूलों को बांटना है, और फिर जहाँ आपके पास प्लेट्स आएंगे वहाँ पे आपको फूल देने हैं, फिर सब फूल जो है प्रभुपाद के चरणों में हम अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य,
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य,
ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन